ओम शांति। पहले तो सॉरी कहूंगी क्योंकि लेट आई, पर ठीक है, हम कवर अप कर लेंगे। और अभी हम शुरू करते हैं आपका लास्ट सेशन पीसीबी प्रोग्राम का। पहले तो मैं ये चाहूंगी कि काउंसलिंग ये सब्जेक्ट आपकी एमएससी में रखा है तो उन्होंने खास पर्पज से रखा होगा कि आप इस लेवल पे काउंसलिंग की सेवाएं दे सके। तो वो कौन से लेवल पे आप दे सकते हैं, पहले तो वो अगर आप बताना चाहे तो आप कोई में से बता सकते हैं किस लेवल से आप दे सकेंगे जब आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा, है ना? और नहीं तो आप जैसे कि एक तो स्पिरिचुअलिटी का बैकग्राउंड भी है और साथ में अब साइकोलॉजी या तो कहीं काउंसलिंग का भी बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। तो इससे ये दोनों मिलने से एक फायदा ये होता है कि हम लोग बेटर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो जहां पे भी हम रहते हैं तो हम देखते हैं कि वैसे ही सेंटर पे या जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं उनके पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके पास हमारे सॉल्यूशंस होंगे या तो ये लोग हमें प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को वैसे ही काउंसलिंग करना आना चाहिए। तो एक तो लेवल होती कि जैसे ये भी होती ना पीएचसी मेडिकल फील्ड में, एक प्राइमरी लेवल पे, एक होती है सेकेंडरी लेवल पे, एक होता है टर्शरी लेवल पे। तो आप सब प्राइमरी लेवल पे काउंसलर तो बन ही जाएंगे, राइट? आप रेफर करना सीख जाएंगे कि किसको जरूरत है प्रॉपर प्रोफेशनल काउंसलिंग की भी और कितना हम कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग ये समझ पाएंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाते। हम बस ये सोचते हैं कि पता नहीं ये ऐसा है ये ऐसा है, लेकिन हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम हो तो हमें ये चीजें समझ में आएगी, चाहे अपने भाई बहन चाहे बाहर से जो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते कि इनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम लगती है और इनको हमें हेल्प करने की जरूरत है, ना कि क्रिटिसाइज करने की। और लोग भी कर रहे हैं लेकिन हम जो कि ये कोर्स कर रहे हैं तो हम ये जान सकेंगे, उनको प्रॉपर हेल्प कर सकेंगे जिससे वो नॉर्मल पीपल की तरह जी सकेंगे, राइट? और हमें भी जरूरत होती है कभी कभी, है ना? लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसी क्राइसिस, कोई ऐसी इवेंट हो जाए जिससे हम भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो ये हमारे लिए भी समझने के लिए जरूरी है कि कहाँ हमें जरूरत है अपने आप को काउंसलिंग करने की या मदद लेने की। ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअल है इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। हमारे भी अपने नेचर है, बिहेवियर है जो कि बचपन से चल रहे, हम जो बचपन में माहौल में रहे, जो भी हमें माहौल मिला, मतलब माता पिता, तो ये सब चीजें भी तो मायने रखती है। ऐसा नहीं कि अभी हमें ज्ञान मिला तो हमको एकदम, तो हमारे जो पिछले स्वभाव है या तो पिछला भी कह सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, तो जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी या बड़ी हो सकती है। तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हमें हो सके, फिर हम अवॉइड करते जाते हैं, निग्लेक्ट करते जाते हैं, तो एक दिन वो प्रॉब्लम बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आती है जिसका फिर इलाज इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, या तो फिर एकदम हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, है ना? और उसका इलाज इतना नहीं होता है जितना कि स्टार्टिंग की फेज में पूरी तरह से रिकवरी हो सकती है। तो अब हम शुरू करते हैं काउंसलिंग जो आपका सब्जेक्ट है, जिसमें दो चीजें हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट, दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट। कुछ केसेस हम देखेंगे और आपका जैसे लॉग बुक भी है तो वो भरने में भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो मैं ये चाहूंगी कि वैसे ये सेशन, जैसे भाई साहब ने बताया, इंटरेक्टिव सेशन है काउंसलिंग, तो इंटरेक्टिव रीति से हम इसको करें और उसमें आप एंजॉय भी करेंगे और आप समझ पाएंगे इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से, सही है? तो अब मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि काउंसलिंग का अर्थ आप क्या समझते हैं? कोई एक दो तो बताइए कि काउंसलिंग मीन्स क्या, व्हाट इज काउंसलिंग? ऑप्शंस। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि काउंसलिंग प्रोसेस में ये सब चीजें आती है। सही कहा। और कोई कहना चाहेंगे? काउंसलिंग अभी तक भी जो हमने समझा है, आपने सुना ना इन्होंने जो कहा, सही है। कोई और बताना चाहेगा? मैं भी वही कर रही हूँ है ना, मैं भी वही कर रही हूँ ना। आपके ही मुख से निकलवा रही हूँ ना आपके आंसर्स। ठीक है, बताएंगे कोई? ठीक है, तो काउंसलिंग में काफी मिसकंसेप्ट है। पहली बात तो है ना, काउंसलिंग क्या है, इसमें काफी मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्ट है। तो इसलिए मैं पूछना चाहती थी कि आप क्या समझते हैं कि काउंसलिंग का अर्थ क्या है, काउंसलिंग में क्या होता है। ठीक है, ये जैसे पोज बताई है काउंसलिंग की है ना, तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं कि वैसे किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, मतलब वो सेटिंग कैसे होती है, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए दोनों। तो काउंसलिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि मैं सबने बताया कि दोनों इन्वॉल्व होते हैं, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट वो सारे ही आंसर्स उसको प्रोवाइड नहीं करता है या उसको एडवाइस नहीं करता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, या आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। वो क्या करते हैं, उनसे ही आंसर निकलवाते हैं, उनको अपनी सिचुएशन के बारे में हम सिर्फ फोकस करवाते हैं, क्योंकि माइंड काफी डिस्ट्रैक्ट हुआ होता है ना, उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आपने देखा जब वो हमसे बात करते हैं फर्स्ट टाइम या किसी से भी बात करते हैं अपने प्रॉब्लम को लेकर, तो आप देखेंगे कभी कोई बात बताएंगे, कभी कोई बात बताएंगे, तो एक सिक्वेंस भी नहीं होती है प्रॉपर, है ना। तो इसलिए भी हम उनको बुलवाते हैं ताकि वो उनकी प्रॉब्लम को पहले तो वो फोकस करके एनालाइज कर पाए कि क्या है, एग्जैक्ट क्या चल रहा है ना, फिर उन्हीं से हम आंसर निकलवाते हैं, ऑप्शंस हम देते हैं कि देखिए आप ये हो सकता है, ये आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, इसको आप ट्राई करके देखिए, इसको भी ट्राई करके देखिए। दूसरी बात, उनको हम उनकी एबिलिटी को बढ़ाते हैं, जो उनकी एबिलिटी है उसको हम बढ़ाते हैं, उनको हम कुछ स्किल्स सिखाते हैं। जो स्किल्स या जो वीकनेस है उनकी उसको ओवरकम करना सिखाते हैं, तो वो स्किल सिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम उनको सिखाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम कैसे उसको सॉल्यूशन निकाले। फिर दूसरा है, कोई सिचुएशन आती है, स्ट्रेस आती है तो उसको कैसे मैनेज करें, ये तो आप सभी जानते ही है ना। तो इस तरह की हम स्किल्स अलग अलग उनको सिखाते हैं, तो इससे क्या होता है, वो अपने आप में ही पोटेंशियल उनके अंदर आ जाता है, जिससे वो खुद ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, अपनी इस प्रेजेंट प्रॉब्लम में भी और फ्यूचर में जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। तो काउंसलिंग का अर्थ आप समझ गए होंगे कि एज सच डायरेक्ट उनकी लाठी बनना ऐसा नहीं है, बल्कि उनको अपने ही पैरों पे खड़ा करना। दूसरी बात, काउंसलिंग जो है उन लोगों के लिए है, ऐसा आप समझते हैं जो कि वीक है, जिनको प्रॉब्लम्स बहुत है, आप क्या समझते हैं? होपलेस का अर्थ भी क्या है एग्जैक्टली?
अभी शिवमणि में एक पेशेंट ऐसा है कि वो उनके बेटी ने भी उसे जहर दिया था, उनकी बेटे की बहू ने भी उनको खाने में जहर दिया था, फिर उसकी बीवी तो मर गई, लेकिन वो कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से खुद को बचा के लिया है। अभी शिवमणि में है, तो लाइक मेरे पिता की उम्र के समान है और मुझसे उनका मिंगलिंग अच्छा होता था, तो मैं कभी उनसे अच्छे से बात करती तो ही लाइक ही बहुत अपनापन अच्छा लगता है, आप अच्छे से बात करती हूँ। मैंने सोचा काउंसलिंग के केस लेने हैं तो शायद पिताजी से मैं परामर्श करना शुरू करूँ। वो खाना खा रहे थे, मैंने पूछा कि अंकल कैसी तबीयत है, ऐसे ही उनकी थाली पे मेरी नजर गई, ऐसे नजर करते करते उनके चेहरे पर देखा, तुम क्या कर रही हो, है मेरे को मार देना चाहती हो, मेरे खाने में भी जहर मिलाना चाहती हो, तुम क्यों मेरा खाना देखती हो, है मैं तो स्पेशल खाना खाता हूँ। आई वॉज वंडरिंग, मैं तो सारा सारा दिन रहती भी नहीं हूँ वहाँ, उनका दो मिनट बात करने गई और वो उबल पड़ी।
राइट, इसका मतलब आपका कहना है कि ऐसी जो केसेस होती है वो होपलेस केसेस है, राइट? तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली होपलेस केस एज सच हम नहीं बोल सकते इसको, राइट? कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है, बस ये है कि डिसऑर्डर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि टैकल करने में डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें हमें दवाइयों की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है और साथ साथ काउंसलिंग की जरूरत होती है, राइट? और जो दूसरे प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि मिनिमल कह सकते हैं आप उसको, जिसमें हम उनका इनसाइट जो होता है, इनसाइट मतलब नजरिया नहीं, इनसाइट मतलब वो समझ पा रहे हैं उनको क्या हो रही तकलीफ, या उनका जो बिहेवियर है वो खुद समझ पा रहे कि मेरा बिहेवियर ऐसा है, कुछ तो तकलीफ हो रही मुझे, कुछ तो मेरा डिफरेंट एबनॉर्मल सा हो रहा है, वो खुद समझ पा रहे हैं और वो खुद आते हैं या खुद अपने जो भी रिलेटिव जो भी नजदीक का कोई उनको वो खुद होके बताते, और दूसरे प्रकार के होते उनको इनसाइट नहीं होता है, तो उसको हम लाभ जैसे है होपलेस कहा, एज सच होपलेस नहीं बोलते, पर उनको हम बोलते हैं कि इनसाइट नहीं होती उनको, है ना। तो वो सीवियर टाइप के डिसऑर्डर्स होती है, बल्कि उनमें एबनॉर्मलिटी बहुत ज्यादा होती, लेकिन उनको लग रहा होता है कि मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप पागल हो वो ऐसा कहेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स जो होती है ये सीवियर टाइप की कह सकते, ठीक है, उसको हम वैसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि साइकोटिक डिसऑर्डर, है ना। और जो पहला टाइप है जिसमें इनसाइट होती है व्यक्ति की प्रॉपर, उसको हम बोलते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर या न्यूरोसिस, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, जो कि मिनिमल होती है। तो मैं ये भी बता देती हूँ उसके एग्जांपल, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जो होती है जिसमें हम नॉर्मली देखते हैं डिप्रेशन के पेशेंट, एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस है, उसमें थोड़ा एबनॉर्मल सा बिहेवियर भी हो जाता है, इंसोमनिया, है ना। कुछ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होती है, इंसोमनिया भी एक साइकोसोमेटिक है, तो ये न्यूरोटिक में ही आता है। फियर, फोबिया होता है छोटी छोटी चीजों का, या कोई बड़ी चीज का भी फोबिया होता है, तो ये जो सब चीजें हैं ये है न्यूरोटिक में, उस व्यक्ति को समझ में आ रहा होता है। हाँ, खुद भी बल्कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे, नॉर्मली हम भी करते हैं ना, छोटी छोटी बातें भी होती तो भी हमें लगता है कि हम किसी को जाके शेयर करें, और बताने के बाद हमें हल्का महसूस होता है, अच्छा लगता है, है ना। तो काउंसलिंग में ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वो हमसे शेयर करता है तो 50% तो उसको वैसे ही रिलीफ मिल जाता है, है ना। तो हम जब आगे वही, तो ये जो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है उसको न्यूरोटिक हम बोलते हैं, पर ये नेक्स्ट सेशन रहेगा ना, पहले थ्योरेटिकल कुछ बातें क्लियर कर लूँ ना मैं, है ना। मैंने एक केस रखी है कि जो हम लाइव रोल प्ले करें या तो जो भी है, तो उसमें हमने एक रखा है, पर ऐसे आपको समझ नहीं आएगी ना एग्जैक्टली। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको हम कहेंगे न्यूरोटिक प्रॉब्लम, है ना, जिसमें कि व्यक्ति को इनसाइट होता है कि मुझे क्या तकलीफ हो रही, खुद भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरे से भी एडवाइस लेता है, पूछता है। तो ये एक चीज हो गई, हाँ राइट राइट बिल्कुल, तभी तो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इतना नजदीक का है काउंसलिंग से, इसलिए आपके इसमें ये सब्जेक्ट रखा है, और हम लोग है जो बेटर काउंसलिंग कर सकते हैं, लोगों की भी और वैसे अपने आप की भी, अगर हमें प्रोफेशनल भी नॉलेज साथ में मिल जाए तो। अच्छा, तो काउंसलिंग हम देख रहे थे कि इसका मीनिंग क्या है। मैं बता रही थी कि काउंसलिंग वीक लोगों के लिए की जाती है क्या, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि वीक लोगों के लिए होती है, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग सभी के लिए होती है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो ये प्रिंसिपल ही ये है कि सामने वाला व्यक्ति और मैं समान है। जब भी हम बात कर रहे हैं तो समान है, इस भाव से ही हम उससे बात कर रहे हैं, राइट। उसको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसको हम समान समझ के कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो वीक कैसे हुआ? वीक लोगों के लिए नहीं है। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे करियर काउंसलिंग भी है, चाइल्ड काउंसलिंग है, राइट। फिर कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए भी काउंसलिंग करते हैं, राइट। अपने आप की एबिलिटी, जस्ट मेरे अंदर क्या वीकनेस है वो जान के उसको और ठीक करने के लिए या और प्रोग्रेस करने के लिए भी काउंसलिंग करते हैं। और क्राइसिस में कभी जरूरत पड़ती है, ऐसा इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि वो वीक है ना। हम देखते हैं ना कि बाय चांस या लक वाइज कोई भी क्राइसिस हमारे साथ हो जाता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, फिर भी है ना, तो ये बाय लक भी होता है। तो ऐसे टाइम में उसकी काउंसलिंग करना मतलब वो वीक है ऐसा नहीं है। फिर हमने बताया कि डिसीजंस जो है वो हम नहीं लेते हैं, वो खुद लेता है, हम सिर्फ ऑप्शंस देते हैं। तो कई बार ये बोलते हैं कि काउंसलिंग माना एडवाइस करना, तो एडवाइस नहीं है या मोरल टीचिंग नहीं है। मोरल टीचिंग देते ना, जैसे ये सही है ये गलत है, आपको ये करना चाहिए, ये सब चीजें काउंसलिंग में नहीं होती है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस मैंने बताए। अब हम देखते हैं कि काउंसलिंग, आगे यही बताया है कि काउंसलिंग इज नॉट जस्ट टॉकिंग। कई बार लोग बोलते हैं हाँ ये तो बातचीत करते हैं जस्ट, है ना, तो ये बातचीत नहीं होती है, ये पूरी तरह से प्लान, पूरी तरह से साइंटिफिक वे से, और कुछ उसके बेस, कुछ थेरीज होती है उसके अकॉर्डिंगली वो बातचीत चल रही होती है, पूरी तरह से फोकस्ड वे में होती है। और हमारा कुछ मोटो होता है, लक्ष्य होता है, उसी पे, उस बेस पे ही हम बातचीत कर रहे होते हैं। कुछ टेक्निक्स होती है, स्किल्स होती है, उसके आधार पे हम उससे बात कर रहे होते हैं। तो जस्ट टॉकिंग चैटिंग नहीं है, ऑर्डरिंग इंस्ट्रक्टिंग नहीं है, किसी को फोर्सफुली हम कोई चीज करवा रहे हैं ये भी नहीं है। जैसे बच्चों को हम ये चीज फिर भी कुछ हद तक करवाते हैं, राइट। छोटे बच्चों को हम करवाते तो वो उसमें फिर भी आता है, एडवाइजिंग भी आता है और ऑर्डर भी आता है, लेकिन इंस्ट्रक्टिंग आता है, लेकिन काउंसलिंग में वो नहीं आता है। मोरलाइजिंग, प्रीचिंग, कॉन्फ्रेंटिंग, कॉन्फ्रेंटिंग मीन्स डायरेक्ट उनको बात कर, डायरेक्ट उनको बोलना कि आप ऐसे करो ऐसे नहीं करो डायरेक्ट, तो कॉन्फ्रेंटिंग नहीं। उनकी डिसीजन हम ले रहे ऐसा नहीं, उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे ऐसा नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत वीक है, ऐसे ही लोगों के लिए होती है ऐसा नहीं है। ये सब एरियाज है जो मैं आपको बताऊंगी, काउंसलिंग के एरियाज है। उसमें से एक मैंने बताया था करियर काउंसलिंग, है ना। तो इस तरह के कुछ एरियाज है, जैसे बच्चों की काउंसलिंग, तो स्कूल या एजुकेशनल काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम डील करते हैं। तो बच्चों में अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स पाई जाती है, बिहेवियरल ये ज्यादातर पाई जाती है, उसमें बहुत ज्यादा साइकोटिक प्रॉब्लम्स नहीं पाई जाती है। हाँ, ये सारी बिहेवियरल है। दूसरा न्यूरोटिक भी उसमें पाई जाती है, डिप्रेशन बच्चों को सब होता है। फिर काउंसलिंग डेफिनेशन है इसमें भी। काउंसलिंग, जैसे आप लोग कुछ आंसर नहीं दे रहे थे स्टार्टिंग में जब मैंने पूछा तब भी, लेकिन देखा जाए तो काउंसलिंग ये डे बाय मतलब रूटीन में हम नॉर्मली एक दूसरे से बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं ना ऐसा, जस्ट हम अपनी एग्जाम होती, ये एडमिशंस होती है उसमें भी हम ये शब्द यूज करते हैं कि हाँ आज मेरी काउंसलिंग थी, आज मेरी फ्रेंड की काउंसलिंग है, तो तब भी हम यूज करते हैं। तो काफी टाइम हम ये शब्द यूज करते हैं, तो काउंसलिंग सबको परिचित है वैसे। तो काउंसलिंग मतलब कुछ और नहीं है वैसे, डे टू डे लाइफ में हम भी कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म में तो काउंसलिंग करते ही है ना। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप काउंसलिंग को वैसे ही जानते हैं, और अच्छे से जानने के लिए ये आपको आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज काउंसलिंग। तो वैसे ही हम कुछ फॉर्म में तो काउंसलिंग करते ही है, अपनी फ्रेंड है उसको कोई तकलीफ है, या अपनी छोटी बहन है उसको कोई तकलीफ है, तो हम जिस तरह से उससे बातचीत करते हैं, व्हाट इज दैट, क्या है काउंसलिंग, काउंसलिंग है ना वो, नहीं? कई बार माँ भी बच्चों के साथ उसी तरह से बात कर रही होती तो क्या है, काउंसलिंग है। कई बार टीचर भी बच्चों के साथ करते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बात करते हैं, तो काउंसलिंग करते ना वो, तो उस तरह की जो बातचीत होती है उसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल और एक बताना चाहूंगी जो हमारे एपिक्स में है, महाभारत में है, कौन सा बैटल जो महाभारत का महायुद्ध हुआ, और या मतलब बताते हैं हुआ नहीं, तो उसमें जो हम बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को क्या करता है, काउंसलिंग ही तो करता है, ऐसा नहीं वो अपनी मत को थोपता है, लेकिन उसको वो रियलाइज भी नहीं, एक्चुअली वो इस तरह की सारी चीजें बताता है कि वो अपने आप ही समझ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइडेंस और काउंसलिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, गाइडेंस और काउंसलिंग। गाइडेंस एक आप लाइन खींच लीजिए, तो पहले आएगा गाइडेंस, फिर बीच में आएगा काउंसलिंग, और उसके आगे आएगा साइकोथेरेपी, है ना, साइकोथेरेपी। तो ये तीन इंटेंसिटी है बस उसकी ना, और कुछ ज्यादा नहीं है, है तो तीनों सेम ही चीज है, पर ये इंटेंसिटी वाइज और प्रॉब्लम्स जो होती है उसके वाइज भी ये तीन चीजें हैं। साइकोथेरेपी मतलब लाइक मोर सीवियर प्रॉब्लम्स में जो की जाती है इंटेंसिवली, कुछ ज्यादा स्किल्स होते हैं उसमें, टेक्निक्स यूज की जाती है, और टाइम भी ज्यादा लगता है रिकवर होने में वो प्रॉब्लम्स को, तो उसको बोलेंगे साइकोथेरेपी। बीच में है काउंसलिंग, और उससे कम इंटेंसिटी और कम सीवियर प्रॉब्लम्स के लिए जो होता है वो होता है गाइडेंस, ठीक है। तो ये तीनों चीजों का डिफरेंस भी बताया मैंने, ये है नीड ऑफ एन आवर। तो ये आप सब जानते ही है, इसको मैं स्किप करती हूँ कि आज इसकी जरूरत है, कितनी ज्यादा जरूरत है, जो आप समझ रहे हैं कि आपकी सिलेबस में सब्जेक्ट डाला है, हाँ, इसका अर्थ ही है कि इसकी बहुत जरूरत है। मतलब लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी चैलेंजेस है, और इतनी प्रकार की प्रॉब्लम्स है कि जिसके कारण व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है, तो उनको आवश्यकता है प्रॉपर गाइडेंस की, काउंसलिंग करने की, चाहे कोई भी हो, बीके हो नॉन बीके हो, ये मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जरूरत होती है। जस्ट हमने बोला कि अगर हम थोड़ी सी शेयरिंग भी करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, तो जब हम समझ रहे कि हम नहीं अपने आप इस चीज को समझ पा रहे तो बेटर है हम बात कर लें, लेकिन वो किससे व्यक्ति से बात करनी चाहिए वो फिर डिफरेंट इश्यू है, पर हमें बात करने से फिर हल्का लगता है और अपनी प्रॉब्लम खुद हम समझ जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग में इन बातों को ज्यादा लेने के बजाय टेक्निक्स जो है उसकी, काउंसलिंग कैसे की जाती है, काउंसलिंग में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है उस पर जाऊंगी। बेनिफिट्स तो आप सब समझ ही रहे, जो काउंसलिंग मैंने बताई डेफिनेशन उसी वही तो बेनिफिट्स है ना। अच्छा, डिफरेंट एरियाज, एक है काउंसलिंग साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी जो मैं बता रही कि एक लाइन अप खींचिए, तो जो बीच का है वो है काउंसलिंग, माना माइनर टू मॉडरेट टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जब हम बातचीत करते हैं कुछ साइंटिफिक बेस के आधार पे, टेक्निक्स के आधार पे, तो उसको कहेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी का एक एरिया है काउंसलिंग साइकोलॉजी। फिर दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी मीन्स साइकोथेरेपी जो कि मोर सीवियर प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है, उसको हम कहेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसी में और एक ब्रांच है न्यूरो साइकोलॉजी। तीसरा एरिया है एजुकेशनल स्कूल साइकोलॉजी, मतलब बच्चों में जो प्रॉब्लम्स पाई जाती है उसको डील करना, बच्चों को डील करना एक डिफरेंट वे होता है, वही प्रॉब्लम उनको होगी लेकिन उनको टैकल करने का तरीका, टेक्निक्स काफी डिफरेंट होती है, इसलिए वो अलग ही एरिया है, उसको सीखना पड़ता है। एडल्ट का फिर भी थोड़ा इजी है, डिफरेंट है, क्योंकि उनको समझता है ना, बच्चों को कुछ भी नहीं समझता है, तो उनसे निकलवाना सारी बातें, प्लस अपनी मतलब उनका बिहेवियर पैटर्न को चेंज करना, वो भी टैक्ट से, तो ये सब चीजें अलग प्रोफेशनल ट्रेनिंग लगता है उसके लिए, तो वो ब्रांच है स्कूल साइकोलॉजी। इसमें करियर भी आ जाता है, वैसे करियर काउंसलिंग भी की जाती है बच्चों की। हेल्थ साइकोलॉजी, इसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेस और हेल्थ का जो कनेक्शन है, साइंटिफिक जो कनेक्शन है वो इसमें डिटेल में समझाया जाता है। और जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि हाइपरटेंशन, राइट, डायबिटीज, हेडेक भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, पर उसमें जो टेंशन हेडेक है, माइग्रेन है, वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। काफी प्रॉब्लम्स है अलग अलग, इंसोमनिया, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम और अर्थराइटिस, अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक है, मतलब स्ट्रेस का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। तो इसमें जो काउंसलिंग की जाती है उसको हम कहते हैं हेल्थ साइकोलॉजी। पांचवा एरिया है क्रिमिनल या फोरेंसिक साइकोलॉजी, जो कि जेल मतलब क्रिमिनल जो होते हैं असॉल्ट, तो उन लोगों में मतलब वहां उस एरिया में होती है वो, खास करके जेल में ऐसे जो एरियाज होते हैं वहां जाकर के वहां होते हैं ये साइकोलॉजिस्ट, और वो इस तरह की प्रॉब्लम वहां पे डील करते हैं। क्योंकि असॉल्ट जो भी होगा क्रिमिनल, तो कई बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, डिफरेंट ऐसी एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है जिस कारण से उन्होंने ऐसा किया हुआ हो, तो इसलिए उनकी एक अलग एरिया है, टैकल करते हैं वो लोग। छठा एरिया है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल एरिया, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है, तो कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, तो उसमें इंटरपर्सनल हमारा जो रिलेशन है, फिर जो एम्प्लॉयज उसको आगे बढ़ाना, उनकी प्रॉपर प्रोग्रेस होना, तो इसके लिए साइकोलॉजी का ये वाला फील्ड डेवलप हुआ है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो वो सिर्फ वहां के ही मतलब लाइक मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन उसी एरिया में उनका काम होता है। सोशल साइकोलॉजी जो कि इसको डील करती है स्पेशली ये गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड एरिया आ जाता है, जिसमें कि सोशल मतलब पब्लिक रिलेशन नहीं, वो तो अपने अलग अलग होंगे, लेकिन एक सोशल जो लाइफ है वो जैसे दंगे फसाद होते हैं, ये सारी जो चीजें होती है तो उसको रिलेट करते हैं, तो ये चीजें मतलब उसको सर्वे करते वो लोग और वो कैसे ठीक हो, तो एक गवर्नमेंट से रिलेटेड ये ब्रांच हो जाती है। प्लस दूसरी बात इसमें ये आती है कि सोशल साइकोलॉजी में कुछ चीजें नॉर्मल जो हम काउंसलिंग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं या तो टैकल करते प्रॉब्लम्स, तो वो होती रिलेशनशिप्स, है ना, तो उसमें हम उसकी वो एक सब्जेक्ट होता है सोशल। हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी, मना एक होता है पर्सनल प्रॉब्लम्स तो इश्यू हम करते हैं, लेकिन वो हम काउंसलिंग में भी करते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी में, है ना, मेरे पर्सनल रिलेशन है, घर में प्रॉब्लम्स है, तो ये तो छोटी फॉर्म पे हो ना, सोशल साइकोलॉजी में बहुत बड़े फॉर्म पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है जो कि एक व्यक्ति से ठीक करने से नहीं होने वाला है, तो उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, ये या तो एनजीओ मिलकर ये काम करते, तो इसको हम कहेंगे सोशल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइकोलॉजी, जिसमें कि रिसर्च किए जाते, क्योंकि साइकोलॉजी ये इवॉल्व ही ऐसे हुआ है, एक्सपेरिमेंटेशन से ही इवॉल्व हुआ है ना, ये कोई पहले नहीं था साइकोलॉजी सब्जेक्ट, ये तो अभी कुछ समय से ही आया है, और इंडिया में नहीं वो भी बाहर से आया है, तो उन्होंने इस चीज की नीड समझी और फिर उस पर रिसर्च करना शुरू किया, और फिर ये प्रिंसिपल बनते गए, तो जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे रिसर्च करके मतलब थेरीज प्रिंसिपल अब हम वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें और नई नई चीजें भी हम जब देखते हैं तो वो कैसे देख सकते हैं रिसर्च के द्वारा, जैसे मेडिकल फील्ड में भी है, नई नई चीजें कैसे आ रही है, अगर वो रिसर्च नहीं करेंगे तो नई टेक्निक नई दवाई आएगी, इसलिए ये एक ब्रांच है इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइकोलॉजी। ये एरियाज हो गए, तीन टाइप्स होते हैं काउंसलिंग के, ये डिफरेंट चीज है, इसमें मैंने मेंशन किया है, बट ये अलग चीज है। काउंसलिंग साइकोलॉजी, अभी हम काउंसलिंग पे फोकस कर रहे हैं, ये पार्ट पूरा हो गया एरिया। तो काउंसलिंग में तीन टाइप की काउंसलिंग होती है मेनली, अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइप्स बनते हैं। तो एक प्रकार जो है वो ये है कि एक ग्रुप काउंसलिंग, दूसरा है इंडिविजुअल काउंसलिंग, और तीसरा है फैमिली काउंसलिंग। जब हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग ये एरिया जो है उसमें हम देखते हैं कि मेनली ये तीन टाइप की काउंसलिंग होती है। ग्रुप काउंसलिंग का मतलब होता है कि जिन लोगों को सेम प्रॉब्लम्स होती है, तो चार से ज्यादा लोग ग्रुप बना के फिर उनको हम थेरेपी देते हैं। तो उसमें जो दी जाती है उसको बोलते हैं ग्रुप थेरेपी या ग्रुप काउंसलिंग। तो उसके भी अपने टेक्निक्स हैं ग्रुप काउंसलिंग कैसे की जाती है, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसमें ग्रुप काउंसलिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, तो उसमें ग्रुप काउंसलिंग की जाती है। इंडिविजुअली बैठ के इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि चार पांच लोग उसी प्रॉब्लम के, उसमें ज्यादा वो इफेक्टिव होती है। जैसे कि एडिक्शन की प्रॉब्लम्स है, अगर उसमें ग्रुप काउंसलिंग करते तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, मतलब जिसमें हम ओपन अप नहीं हो सकते, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है और उनको लगता है मेरे ही साथ, मतलब इतनी ज्यादा ऐसी चीजें जो ठीक नहीं हो सकती, ऐसा कुछ लगता है, तो वो वाली प्रॉब्लम्स में ग्रुप थेरेपी ज्यादा इफेक्टिव होती है। और इंडिविजुअल काउंसलिंग तो आप समझ ही रहे, पर्सनल जब हम बात करते हैं। और फैमिली काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग ये होता है कि जब फैमिली पूरी इन्वॉल्व है उस प्रॉब्लम में लेकर, तो उसमें हम पूरे फैमिली की काउंसलिंग करते हैं। दूसरा फैमिली काउंसलिंग तब करते हैं जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, एग्जांपल डिमेंशिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया नहीं होता है, ओल्ड एज में मेमोरी लॉस होती है तो कंफ्यूज रहता है व्यक्ति, तो ये जो प्रॉब्लम है उसमें फैमिली की काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है। फैमिली को ये सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, फिर उनके साथ कैसे टैकल करना चाहिए वो भी उनको मतलब बताना, उसके लिए काउंसलिंग करना जरूरी होता है, तो उसमें हम करते हैं फैमिली काउंसलिंग। एडिक्शन की प्रॉब्लम है रिलेटेड है ना, पूरा ही फैमिली पे इफेक्ट आ रहा है उसका, हाँ तो पूरी फैमिली का फैमिली पर इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम फैमिली की काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल्स जो है काउंसलिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये चीजें अगर हम समझते हैं तो हमने बेसिक सारी चीजें कवर कर ली काउंसलिंग की, ये चीजों के आधार पे हम काउंसलिंग करते हैं, नहीं तो काउंसलिंग जस्ट समझना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीजें अगर हम समझते तभी हम काउंसलिंग कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसमें कि काउंसलिंग जो कर रहा है व्यक्ति उसको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, और मतलब जो व्यक्ति काउंसलिंग करने आया है उसके साथ, उस व्यक्ति को हम पेशेंट नहीं बोलते एक्चुअली, इसमें हम उसको क्लाइंट बोलते हैं, पेशेंट नहीं होता है वो, ठीक है, वो पेशेंट नहीं है। तो ट्रस्ट हमें बिल्ड करना होता है, तो आप समझते हैं कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो पाएगा, वो अपनी सारी चीजें एक्सप्रेस कर सके हमारे सामने, ओपन हो सके, इसके लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड है कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर हम उसकी हर चीज को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं तो ही वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या तो कोड है काउंसलिंग का, है ना, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब उनकी हर चीज हम अपने तक ही सीमित रखें, और हम वो जब आता है उसको हम शुरू में ही ये बोल देते हैं, है ना, तो धीरे 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 क्या होता है उसका विश्वास बढ़ने लगता है। थर्ड है सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि हमने डिस्कस की ये बात, माना हम उसके ऊपर सौंपते हैं, हम उसके जिम्मेदारी या हम उसके प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने लग जाए ऐसा नहीं करते, हम उनको एबल बनाते और सशक्त बना देते हैं, तो वो खुद अपने हम सिर्फ ऑप्शन देते हैं, उसमें से वो खुद चूज करता है और खुद उस पर प्रैक्टिस करता है, अमल करता है, तो इसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चौथी बात है पॉजिटिव अप्रोच। उस व्यक्ति को हम अपने बराबर का देखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ उससे हम बात करते हैं, और जब भी वो छोटी छोटी चीजें कुछ करता है तो उसको हम पॉजिटिवली रिवार्ड देते हैं कि अच्छा आपने ये किया, बहुत अच्छा किया। मतलब और कोई होता तो ये शायद नहीं कर पाता, आपने ये भी कर लिया, कितनी अच्छी बात है, आपने तो बहुत कम समय में ये कर लिया। तो इस तरह से हम उनको रिवार्ड देते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं उसकी हर छोटी चीजों पे। फोकस ऑन फीलिंग्स, काउंसलिंग का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हम व्यक्ति की फीलिंग्स, भावना, भाव, उस पे जाते हैं, उस पे फोकस करते हैं, वो जो बोल रहा है उस पे नहीं, वो क्या फील कर रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, तो फीलिंग्स में जो चीजें हमें समझ में आती है उस पे हमें फोकस करना है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर ये वीकनेस है, उसने ये गलती करी है, ये किया है, हम क्या करते हैं अनकंडीशनल उसको पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं। जस्ट लाइक बाबा हमें देते हैं, हमने भी गलती करी फिर भी या वीकनेसेस है हमारे अंदर, पर बाबा हमें कभी भी वैसे नजर से नहीं देखता है और ना ही हमें बोलते हैं। तो सेम ऐसे ये है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। वार्मथ एंड ओपननेस, हम उनको कहें कि आप अपनी सारी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ये सिर्फ ये दीवार तक ही रहेगी, इसके आगे नहीं जाएगी, और आप पूरी खुली दिल से आप अपनी सारी बातें हमें बता सकते हैं बेझिझक होके, रिलैक्स होके। तो ये है ओपननेस। फिर हम उनके साथ फ्रेंडली बात करते हैं, मतलब इसमें बैलेंस होता है, एज सच एकदम कैजुअल बन जाए उसके जैसा ऐसा भी नहीं, लेकिन हम ऐसे भी नहीं रहते कि जो हम कोई उनसे सुपीरियर है या हम कोई टीचर है उनके, ऐसे भी हम बिहेव नहीं करते, उनसे हम ज्यादा बड़े हैं ऐसा भी नहीं करते भी, या बहुत ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं उनके साथ बिहेव करते, लेकिन बहुत ज्यादा कैजुअल भी नहीं, ऐसे ही है, मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो चीज हम उनको दिखाते हैं कि हम एक फ्रेंडली है, राइट? जैसे फ्रेंड के साथ बात करते वो चीज भी हम उनको बताते हैं, या तो अपने फीलिंग्स से, हमारे बिहेवियर से वो समझ जाते हैं। फिर है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हम देखेंगे, ये जो स्किल है ये हम आगे देखेंगे, इसमें कैसे मतलब हम उनकी हर चीज को मतलब आगे बढ़ाते हैं, ये प्रोसेस जो है डायरेक्ट करते हैं, फैसिलिटेशन करते हैं, आगे लेके जाते, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है। फोकस्ड, हमारा माइंड फोकस्ड होता है, जो हमें करना है उसी में फोकस्ड है, हम एक स्टेप या एक शब्द भी हम कोई उधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम फैसिलिटेट करते, अगर वो कहीं और जा रहा है या कुछ और बातें सुना रहा है तो हम धीरे से फैसिलिटेशन, आप सब शायद कुछ लोग तो आप में से जानते हैं है ना, कि कैसे युक्ति से उनको लाइन पे लाना होता है, ट्रैक हमें पकड़ के और उनको भी उस ट्रैक पे ही लेकर के चलना होता है, अगर वो कहीं जा रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं तुरंत हमें अपने ट्रैक पर आना होता है। क्लाइंट प्रस्पेक्टिव, मतलब जो भी क्लाइंट कह रहा है उसको हम सीरियसली ले, ऐसा नहीं कि अरे तो क्या बोल रहा है पता नहीं ऐसे होता है क्या, मतलब ऐसे नहीं हम उस चीज को ले, वो जो फील कर रहा है उसको हम रिगार्ड दें, उसको हम सीरियसली ले, भले ऐसा नहीं है तो भी। कई बार होता है सामने वाला कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें है ना वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एग्जागरेट करता है प्रॉब्लम, उसको नहीं है लेकिन जैसे सुसाइडल टेंडेंसी भी है तो जो सुसाइडल अटेम्प्ट होते वो क्या होता है एक्चुअली किसी का ध्यान खिंचवाने के लिए किया गया होता है ना, राइट? तो एक्चुअली वो करना नहीं चाहता है सुसाइड, और वो करता भी नहीं है लेकिन जस्ट अटेम्प्ट करता है, उसमें वो बचता है हमेशा। तो ये जो अटेम्प्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो ध्यान खिंचवाना चाहता है ना, तो ऐसी चीजें होती है, तो हमें ये पता होता है लेकिन उसको सीरियसली ले, वो जो कह रहा है उसको हम प्रॉपर रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे वो जो कह रहा है। या तो हम ये देखते हैं हिस्टेरिया नाम की एक डिसऑर्डर है, आप जानते होंगे हिस्टेरिया में क्या होता है कि वो व्यक्ति जैसे फीट आता है ना, एपिलेप्सी में जो प्रॉब्लम फीट आती तो उसको उस टाइप से होता है, लेकिन वो एक्चुअली एपिलेप्सी नहीं होती, वो ध्यान खिंचवाने के लिए वो ऐसा कर रहा होता है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें मतलब कई बार व्यक्ति झूठ भी बोल रहा है लेकिन हमें उसको सीरियसली लेना है जो भी वो कह रहा है। नहीं तो दो अलग है ना, दो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, एक इपिलेप्सी की अपनी अलग प्रॉब्लम है तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है। उसमें क्या होता है इपिलेप्सी में फिर जो प्रैक्टिकल जो मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है, फेस आता है मुख से तुरंत वो कॉन्शियस नहीं होता है, राइट, और कभी उसको चोट लगती है, ये तीन चीजें बताई मैंने। और जो फॉल्स है ना, इपिलेप्सी नहीं है तो उसमें क्या होता है, फेस नहीं आएगा मुख से, फिर वो ऐसी जगह पे कभी नहीं गिरेगा जहां उसको चोट लगेगी, है ना, चोट नहीं लगेगी उसको, राइट, और वो मतलब पता चलता है कि वो कॉन्शियस है। हम जो चीजें करते हैं ना कॉन्शियसनेस लाने के लिए तो उससे वो मतलब नहीं होता है, फिर भी नॉर्मली तो हो जाना चाहिए ना, तो उससे भी वो नहीं होता है क्योंकि वो जानबूझ के कर रहा है ना, हाँ ऊपर की तरफ जाती है, तो डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें, इसलिए हम वो चीज करते हैं ना डिफ्रेंशिएशन, तभी तो हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है ये नहीं है। अच्छा आगे काउंसलर जो है वो जुनाइन होना चाहिए, मतलब जो वो कह रहा है वो ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर, वो खुद भी उसको अप्लाई कर रहा है और वो जो कह रहा है वो उसकी जो प्रॉब्लम है उसी को लेकर के वो बात बता रहा है, मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है अपने आप से और क्लाइंट से, ट्रांसपेरेंसी है उसकी पूरी, ये समझ रहे हैं, समझ में आ गया, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो जो कह रहा है वो खुद उसको अप्लाई कर रहा है, मतलब उसकी प्रैक्टिकल लाइफ भी वैसी है, 100% नहीं पर है उसकी प्रैक्टिकल लाइफ और वो कह रहा है, या उसको जो नॉलेज वो इतना है उस आधार से कह रहा है, ऐसे ही नहीं बात कर रहा है वो कुछ भी, तो ये ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर, ऑनेस्टी है, समझो। उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो प्रॉपर रेफर्ड करता है, ऐसा नहीं कि हाँ फिर भी सुनाता जा रहा है, ऐसा नहीं। अगर इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम है तो वो कहेगा नहीं आप इनके पास जाइए और उनको आप दिखाइए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये एरिया मेरा नहीं है, इसमें मेरा काम नहीं है, मैंने काम नहीं किया इसमें, तो ये हुआ ऑनेस्टी। ये अगेन वही है क्वालिटीज क्या क्या होती है, पढ़ लूं क्या मैं फर्स्ट, काफी चीजें वही है, कुछ दो तीन चीजें डिफरेंट है, जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल अच्छे होने चाहिए, मतलब उसका रिलेशंस जो है वो अच्छे होने चाहिए, एक्टिव लिसनिंग ये हम आगे लेंगे, वार्म एम्पैथी ये भी हम लेंगे, एम्पैथेटिक एटीट्यूड क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, सामने जो व्यक्ति उसको हम अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो जो है जैसा है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको वो रिगार्ड हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके अंदर ये वीकनेस है वो है, हम ये सोच ही नहीं रहे, और बाद में भी काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद भी हमें याद भी नहीं रहती है वो चीज, राइट। तो ये है एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, पॉजिटिव आउटलुक, एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, कई बार एनवायरमेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है उसको लाइट करने के लिए ये चीज उसके पास होनी चाहिए, बी क्रिएटिव क्योंकि उसको बहुत सारे हमें ऑप्शन देने हैं तो क्रिएटिव रहना बहुत जरूरी है, इंटरेस्टेड इन कॉन्स्टेंट सेल्फ ग्रोथ, वो खुद भी अपनी ग्रोथ हमेशा करता रहे इसमें उसका इंटरेस्ट रहे, गुड कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू मैनेज ओन स्ट्रेस, राइट, ऑनेस्टी की जो बात करी उसको अपनी स्ट्रेस को टैकल करना भी आना चाहिए, वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉलेज, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसको काफी अलग अलग एरियाज की नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स उसको कुछ नई चीजें पढ़ते रहनी चाहिए, जनरल नॉलेज पढ़ते रहना चाहिए, बात करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, ताकि वो मतलब समझो आपके पास जो क्लाइंट है उसका जो फील्ड है, आपको अगर उसकी नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे मतलब उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, या उसको ऑप्शंस देने तो आप कैसे दे पाएंगे अगर आप उसके फील्ड की जानकारी आपको नहीं है। तो भले हम उस फील्ड के नहीं है, या सिर्फ फील्ड की बात नहीं है, बहुत सारे एरियाज एस्पेक्ट से जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे अकेला व्यक्ति रहता है तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है हमें पता होनी चाहिए, फैमिली लाइफ है उनको क्या प्रॉब्लम आती है हमें पूरी तरह से डिटेल पता होना चाहिए, ओल्ड एज है तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल में रियल में, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अलग अलग प्रोफेशन की नॉलेज, अभी क्या चल रहा है वर्तमान में कहाँ पे क्या, हर चीज की जितनी हो सके नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड चाहिए इसमें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रही थी कि बैलेंस होना चाहिए, एकदम कैजुअल रिलेशनशिप भी नहीं और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं, तो बैलेंस होना चाहिए, पर प्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत जरूरी इसमें। क्यों? क्योंकि वो लोग हम पे फिर डिपेंड हो जाते हैं, या तो वो हमें अपना मतलब बाद में भी जस्ट वो समझेंगे कि हाँ कोई बात है तो हम बात कर ले, फोन कर ले और अपनी बात ठीक कर ले, लेकिन प्रोफेशनल मतलब आपको उसको क्लोज करना है, उसको आपको एबल बना के अपने पैर पे खड़ा करके फिर मतलब फिर वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है फिर, राइट? मतलब प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब हमारा रिलेशन रहेगा बट वो रिलेशन नहीं रहेगा, हमें उसको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बना के फिर उसको छोड़ देना है। बी अवेयर ऑफ वंस लिमिटेशंस इन ट्रेनिंग एंड स्किल, जो मैं बता रही थी कि जो हमारी वीकनेस है वो हमें पता होनी चाहिए, हम बता भी सके, रेफर करना है किसी को तो हम करें, ऐसा नहीं कि उसको भी हम टैकल ही कर रहे हैं, नहीं 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 हमें तो आता है तो हम ये करें, है ना? तो हमें अपने लिमिटेशंस भी पता होने, जो मैं फर्स्ट बात आपको बताई थी कि आपको ये जो कोर्स या जो सब्जेक्ट दिया गया है तो उसमें वो कौन से पर्पस से दिया गया है, तो किस लेवल पे आप काउंसलिंग कर सकेंगे, है ना? तो आपकी लिमिटेशंस क्या रहेंगे, फिर आप कर क्या सकते हैं, मतलब आपका स्किल क्या डेवलप हो जाएगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। काउंसलिंग प्रोसेस इसमें है 6 स्टेप्स, ये 6 स्टेप में एक चीज है जो कॉमन है वो है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट हमें हर स्टेप में उसको देना ही है, इमोशनल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने प्रिंसिपल्स देखे ना, तो प्रिंसिपल्स जो है वो सारे किस पर आते हैं अल्टीमेटली, अगर वो प्रिंसिपल्स है या वो क्वालिटीज है काउंसलर में, तो हम अल्टीमेटली इमोशनल सपोर्ट देते हैं क्लाइंट को। तो फर्स्ट स्टेप इसमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, हमारे सामने आया है पहले हम क्या देखें कि उसको कौन कौन से एरिया में प्रॉब्लम है मोटे तौर पे। नॉर्मली कौन से एरियाज होते हैं, एक तो वर्क एरिया होगा, या तो फैमिली एरिया होगा, या तो हेल्थ का एरिया होगा, या तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, चाहे फ्रेंड के साथ, चाहे और कुलीग के साथ, तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम, या तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो पर्सनल उसकी अपनी कुछ हैबिट कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो ये एरियाज है, तो हम इस एरियाज वाइज उसकी प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट कर ले, वो जो बात कर रहा है उसी में बिगिनिंग करे, उस वक्त हम एक तो सेटिंग कैसी हो वो सेटिंग करे, एटमोस्फियर ठीक रखे, एटमोस्फियर और सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसकी जो इसेंशियल नीड है क्लाइंट की वो पूरी होनी चाहिए। तो इसेंशियल नीड्स कौन सी होती है, सबसे इसेंशियल कोई भी व्यक्ति की, खाना पीना, है ना? ये नीड्स जो है पहले तो वो पूरी होनी चाहिए। वो आया है और वो अगर बिल्कुल मतलब आपके इसमें ऐसी हालत में है कि वो अभी मतलब गिर जाएगा, इतना वीक हो गया है, तो आप क्या काउंसलिंग करते बैठेंगे उसके साथ? उसको बहुत ज्यादा गिड़ीनेस हो रहा है, या फिर कहे पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या आप काउंसलिंग कर पाएंगे, उससे बातचीत कर पाएंगे? तो पहले इन चीजों का आप ध्यान देंगे ना, तो फर्स्ट है ये चीज है जो बहुत इसेंशियल चीजें होती है, तो वो चीजें हम पहले देख ले, उसको और कोई और चीज की जरूरत तो नहीं है, नहीं तो वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा। बहुत ही भूखा है, मतलब बहुत भूख लगी, ऐसे हालत में आया, बहुत प्यास लगी है, तो आप जो भी बातें बता रहे हैं तो पहले आप ये चीज पर ध्यान देंगे तो ही तो आगे सुनेगा वो। तो ये है एटमोस्फियर सेटिंग, इन चीजों का ध्यान रखना। फिर उसके बाद आती है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि मैं कौन हूं। तो यहां प्रोफेशनलिज्म आता है कि हम प्रॉपर इंट्रोड्यूस करें कि मैं ये हूं, मेरा काम ये है, और आप मेरे सामने पूरी तरह से ओपन होके, रिलैक्स होके, ओपन होके आप बात कर सकते हैं। यही तक रहेगी बात, मेरा काम ही ये है, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं समझ सकता हूँ, तो आप बेझिझक होके हमसे बात करिए। तो ये है इंट्रोड्यूस करना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बताइए। थर्ड है गेटिंग एट प्रॉब्लम्स असेसमेंट्स, मतलब उसकी डिटेल हिस्ट्री हम ले, डिटेल हिस्ट्री ले, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जो भी प्रॉब्लम है उसकी, और स्पेशली करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम जो है अभी प्रेजेंट में, उस पर फोकस करते हुए उसका डिटेल पूरा ले, असेसमेंट करें उसके बिहेवियर का, उसकी जो फीलिंग्स है, जैसे कि डिप्रेस्ड, फीलिंग्स ही इंपॉर्टेंट, फीलिंग्स ही तो डिसऑर्डर है ना, डिप्रेस्ड है, स्ट्रेसफुल, मतलब एंजाइटी बहुत लग रही है, डर लग रहा है, ये फीलिंग्स है सारे, वो कैसे उसको कोप कर रहे हैं उस पे ध्यान दें। जैसे आपने कहा था कि क्या बताया था आपने, डिप्रेशन की बात बताई थी ना, या तो मैं एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी को डर लगता है तो वो क्या करता है, उसको कोप कैसे करता है, सोशल फियर है, मतलब कोई भी गैदरिंग में जाने में या कोई बहुत ज्यादा लोग है इकट्ठे, भीड़ में जाने में बहुत डर लगता है, तो वो क्या करता है उसको कोप करने के लिए, वो वहां जाएगा, डर लगेगा, फिर उसकी पाल्पिटेशन बढ़ेगी, धड़कन बढ़ जाएगी, फिर पसीना आएगा, इस तरह की प्रॉब्लम उसको होने लगेगी, उसको वो टैकल नहीं कर पाएगा, कुछ बोलना होगा बोल नहीं पाएगा, पसीना आएगा, तो उसको पता है ये प्रॉब्लम हो रही, तो उसको कोप करना है, उसको कोप करना मतलब वो नहीं हो उसको, है ना, या ठीक हो, तो वो क्या कर रहा है, उसको वो जा ही नहीं रहा वहां पे, ऐसी सिचुएशन को वो अवॉइड कर रहा है, तो उसने कोप कैसे किया उस चीज सिचुएशन को या उसकी जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करके। तो इस तरह की जो बिहेवियर है वो हम असेस करें कि वो कैसे उसको कोप कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कोपिंग बिहेवियर होते हैं अपनाते, तो वो सही है गलत है वो हम असेस करें। कहां और लोग हैं, हाँ, तो यही है हमारी कोपिंग बिहेवियर, बिल्कुल अवॉइडिंग बिहेवियर, ये हमारे अपने कोपिंग बिहेवियर होते हैं कि हम उसको कैसे कोप कर रहे हैं, कोई करेगा नहीं, मुझे धीरे धीरे कुछ, पहले थोड़े थोड़े लोग है उसमें जाऊंगा, फिर और ज्यादा लोग है उसमें जाया करूंगा, या तो मैं अपना कोई नजदीक का होगा उसके साथ लेके जाया करूंगा, उससे बातचीत करता रहूंगा, मतलब धीरे धीरे ऐसे वो कोप कर सकता है उस चीज को। तो कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई सोचेगा कि नहीं ये मेरे सामने एक मतलब इस तरह की इवेंट है, लेकिन उसको सामना करके ही ठीक करना है, मुझे जाना ही है, जाना ही है, जाना है, जो भी होगा मैं उसको फेस करूंगा, और एक दिन तो आएगा कि जो मुझे ऐसी तकलीफ होगी नहीं, तो उसका ऐसा है कोपिंग बिहेवियर, तो कैसा है वो हमें असेस करना है, क्योंकि यही तो उसको हमें, हम क्या करने वाले काउंसलिंग में, यही तो हम अल्टर करने वाले हैं फिर उसको ना, इसलिए कोपिंग बिहेवियर जानने की जरूरत है। और फिर रिसोर्सेस कि उसके पास ऐसी कौन कौन सी एबिलिटी है, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे वो अपनी जो उसकी प्रॉब्लम है उसको वो ठीक कर सकता है। फिर फोर्थ है फॉर्मुलेटिंग गोल्स फॉर काउंसलिंग हेल्पिंग प्लान, मतलब ये है फिर एक्शन प्लान पूरा। एक तो पहले हमने फॉर्मुलेट किया, पूरा फॉर्मुलेट हो गया कि ये व्यक्ति है, उसका नाम ये है, पूरा उसका पर्सनल डिटेल है, फिर उसके बाद उसकी करंट प्रॉब्लम ये है, उसकी ये एरिया में प्रॉब्लम है, उसकी कोपिंग बिहेवियर ये है, उसकी असेसमेंट में हम उसकी पर्सनालिटी को भी देख सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी, जैसे उसको गुस्सा ज्यादा आता है या तो बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, किसी को गुस्सा नहीं आ रहा है, वो इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बातें अंदर ही रख लेता है, तो गुस्सा तो कभी नहीं करता, अंदर ही अंदर रख लेता है, तो ये उसका नेचर, तो ये हमने उसकी डिटेल ली, फिर प्रॉब्लम क्या है वो लिया, और फिर हम उसको क्या करना चाह रहे हैं अभी वो भी हमने लिखा कि अभी हम क्या करेंगे, उसको जो भी टेक्निक है, जो भी थेरेपी है, हम क्या करेंगे, तो पूरी तरह से हमने प्लान किया। और पांचवी स्टेप है, लेट हो जाएगा बहुत, या तो हम बाद में बात कर लेंगे। पांचवी स्टेप है कि उसको इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकल में, वो जो हमने प्लान किया है, और हम उसको भी बताते हैं साथ साथ कि हम अभी ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। और छठी स्टेज है उसको एन टर्मिनेशन, माना जो काउंसलिंग हम कर रहे हैं उसको हम स्टॉप करेंगे, जितना हमें एक्सपेक्टेड उसमें चेंज ग्रोथ थी, एक्सपेक्ट जितनी हमने करी थी उतनी आ गई है, वो उतना एबल हो चुका है अभी, तो तब हम उससे बातचीत करते हैं और फिर कि अभी हम पूरा करते हैं, अभी आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम कभी भी आप ऐसे ही आ सकते हैं मिलने करने, दैट्स ऑल। या तो हो सकता है किसी में ऐसा होगा कि फोन करके बताने की जरूरत है, किसी में हो सकता है कि 6 महीने के बाद फिर से आकर के फॉलोअप, जिसको हम बोलते हैं 6 महीने के बाद आपको आने की जरूरत है, जस्ट आप अपना फॉलोअप मतलब अपना जस्ट प्रोग्रेस बताइए, ये जरूरत हो सकती है, और किसी को बिल्कुल आने की जरूरत नहीं हो सकती। तो इस तरह से हम लास्ट सेशन में उनसे ये बातचीत करके उसको एंड करें, ये है प्रोसेस। ये भी वही है अलग फॉर्मेट में, जैसे हमने पूरी इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड कलेक्ट की, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोर इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स है उसको हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने फॉर्मुलेट किया पूरा कि क्या क्या प्रॉब्लम अभी उसकी है, उसके पीछे क्या चीजें मतलब रीजंस क्या है, कैसे कैसे प्रॉब्लम होती गई, अभी उसका बिहेवियर मतलब कोपिंग बिहेवियर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कैसे बढ़ रही है, क्या फैक्टर्स है जो उसको प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, और तो इस तरह से हमने सारा फॉर्मुलेट किया। फिर हमने इसमें स्टेज है गोल सेटिंग फॉर थेरेप्यूटिक प्रोसेस, माना हम उसको इम्प्लीमेंट इसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए जो हमने प्लान किया है थेरेपी देने का, काउंसलिंग प्रोसेस काउंसलिंग टेक्निक्स का, तो वो, और फिर इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट देखिए कि फीडबैक कैसे मतलब प्रोग्रेस कैसी हो रही है, असेस कर रहे, और लास्ट क्लोजर। इसमें असेसमेंट बहुत जरूरी होता है, अगर हमें कुछ प्रोग्रेस नहीं लग रही है मतलब हम कहीं ना कहीं थेरेपी गलत दे रहे, या तो वो बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए असेसमेंट करना प्रोग्रेस की बहुत जरूरी है कि कितना उसमें चेंज आ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, या कितना वो समझ पा रहा है। फर्स्ट है लिसनिंग, हम पूरी तरह से उसका फॉर्मुलेट करें केस को, उसके लिए हमें चाहिए लिसनिंग पैसिव एक्टिव, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड है एक्शन प्लानिंग। ये आपका फॉर्मेट है, वैसे सही है ये फॉर्मेट, लेकिन कुछ और भी चीजें कई बार हम लोग करते हैं, तो इसमें डिटेल्स लेते क्लाइंट की, फिर पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री कई बार नहीं पता होता है, सोशियो इकोनॉमिक मतलब एक तो इकोनॉमिकली मंथली कितना इनकम है या ईयरली कितना इनकम है, मतलब मिडल है, हाई है, ये जो रेंज होती है ना 3 में, उसमें वो कहाँ फिट होता है, और ये मेनली सोशियो इकोनॉमिक में आता है, और इसके वाइज भी प्रोफेशन वाइज भी, प्रोफेशन वाइज और यही आता है, ये कल्चरल या कास्ट वाइज, मतलब वैसे कास्ट वाइज नहीं है, पर उससे हम एक लेवल को मतलब उसको देख सकते हैं। एक्चुअली ये किसके लिए होता है मेनली, कई चीजें होती है कि इस एरिया में वो प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है, इस एरिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है ना, तो इसके लिए हमें ये देखना है। फिर एजुकेशन लेवल, उसका मतलब समझने का ये कितना है, ये सब जानने के लिए हम ये लेते हैं। सच इसका कोई मीनिंग नहीं, नहीं तो हमारे लिए कोई ये नहीं है जानना, लेकिन हम इससे यहाँ पे यूज करते हैं उसको। फिर है ऑब्जर्वेशंस मेड, हम जो देख रहे हैं उससे बात कर रहे हैं, तो उसमें हम जो ऑब्जर्व करते हैं मतलब देखते हुए हम क्या क्या चीजें नोट कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन मेड में आएगी। और फीलिंग्स, हम जो देख रहे हैं उससे हम उसकी फीलिंग्स, मेन हमारा फोकस वैसे फीलिंग्स पे, पर एक तो आउटर जो चीजें हैं वो ऑब्जर्वेशन में आएगी, और अपीयरेंस जैसे हम बोलते हैं ना आउटर अपीयरेंस, और दूसरा फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स जो है वो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम लिस्ट, तो हमने उसको फोकस कर दिया कि ये प्रॉब्लम है जिसपे हमें टैकल करना है, इस प्रॉब्लम को उसकी पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। फिर टेक्निक्स कौन सी यूज की हमने, ट्रीटमेंट सजेस्ट हमने कौन सी की, और उसका रिजल्ट असेसमेंट, और लास्ट कंक्लूजन। अच्छा, अभी हम देखते हैं, ये शायद इतना नहीं कर पाएंगे पर देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जब हम काउंसलिंग करते हैं तो जो बिगिनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, रैपो बिल्डिंग करते हैं। रैपो बिल्डिंग मतलब ट्रस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ओपन हो जाए वो हमारे साथ पूरी तरह से, ट्रस्ट उसका हमारे पे हो जाए। तो इसके लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं, उनसे हम बातें कैसे निकलवाते हैं, तो रैपो हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये रैपो शब्द काउंसलिंग में ही यूज किया जाता है, उसका मेन वर्ड है ये रैपो। तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इसमें काफी यूज होती है, एक्टिव लिसनिंग यूज होती है रैपो बिल्डिंग के लिए, और जो प्रिंसिपल्स बताए वो रैपो बिल्डिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ट्रस्ट वाला एनवायरनमेंट, अपने बिहेवियर नहीं रखेंगे, फिर अपनी ओपननेस नहीं रखेंगे, एक फैमिली या एक फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रहेगा, जो हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी, हम पॉजिटिव रिगार्ड नहीं देंगे, तो रैपो नहीं हो पाएगा। तो कई बार होता है कि जैसे हमने उससे सब कुछ हमने ठीक ठाक किया, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने जो साथ में होते उनके साथ शेयर कर लेते हैं उनकी प्रॉब्लम, लेकिन मतलब उनको हम बताते हैं ऐसा ऐसा था, ऐसा एक व्यक्ति आया था, उसको ऐसा था ऐसा था, लेकिन क्या हुआ, कभी कहीं ना कहीं तो वो चीज सर्कुलेट होके उसके पास आ सकती है, फिर क्या होगा, उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि देखो ऐसा ऐसे ऐसा किया है ना। तो फिर उसकी जो ट्रीटमेंट हुई है या जो भी काउंसलिंग, कोई इफेक्ट नहीं करेगा उसको, है ना। तो ये चीजें बहुत महत्व की होती है कि कभी भी ये चीज अपने बात किसी तीसरे व्यक्ति के पास जानी नहीं चाहिए, वहीं पे खत्म हो गई। हाँ, सिर्फ वहां पे हम बोल सकते हैं कि जहां पे हो सकता है उसका कोई डॉक्टर हो, उनको ये जानना जरूरी है उसकी कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि उसके हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, और बताना सही है ऐसी कुछ प्रॉब्लम उनको हम बताएं। कुछ इश्यूज है जो फैमिली को बताना जरूरी है, सुसाइड अटेम्प्ट है तो हमें फैमिली को किसी मेंबर को बताना बहुत जरूरी है। फिर और भी कुछ चीजें हैं जो हम किसी कहीं से हमारे पास आया है रेफर्ड होके, तो हमें उससे बात करना जरूरी है, तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं, ये नॉर्म से ये ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी जहां जरूरी नहीं वहां हम बता रहे हैं। आई थिंक ये अपने ही इस पे ये कर रहे रहना, मतलब हम जो कह रहे वो तुम करो, मतलब हम अपनी ही बात को ये कर रहे हैं। वैसे तो वो पथरीला जैसा ऐसा शब्द मीनिंग होता है ना उसका, मतलब हम अपनी ही इस पे अड़े हैं ऐसे, लेकिन जो कि सही नहीं है। वो जो कह रहा है वो भी सही है, उसके ऑप्शंस भी सही है, और हमें जस्ट डायरेक्ट करना है, उसको गाइड करना है। जैसे इसमें बताए डूज एंड डोंट्स, तो अगर आप चाहे तो ये आप ले सकते हैं स्लाइड्स, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी ये। हाँ, इसके ये स्लाइड्स ना, तो आप उसको पढ़ के भी काफी चीजें समझ पाएंगे। डूज एंड डोंट्स, ये दो चीजें होती है हर एक स्किल में, और वो स्किल अप्लाई करनी पड़ती है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं एक्चुअली रोल प्लेइंग करते हैं, रोल प्लेइंग करते हैं, उससे क्या होता है वो एक एक स्किल हमें प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है वो आने लगता है। तो रैपो मतलब कैसे उसको करना है, बातचीत में हम कैसे रैपो बिल्ड करते हैं, तो हम ये खुद आके जैसे आप बता रहे थे उनकी लाइव आप करें तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो वैसे ही एक एक स्किल की भी ऐसी बात है कि हम प्रैक्टिकल में जैसे एक दो लोगों ने इधर आके की, पहले जिसको आता है थोड़ा बहुत उसने आके की करके दिखाया, फिर एक ने आके, तो इस तरह से वो चीजें है जैसे क्वालिटीज है, तो वो हम प्रैक्टिकल में कैसे लाए उसको। जैसे इसमें बताया डोंट बिगिन क्वेश्चनिंग द क्लाइंट इमीडिएटली आफ्टर हर प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट। वो आया हमारे पास, हमने डायरेक्ट शुरू किया, हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो ऐसे नहीं हम बोल सकते है ना। पहले हम सिंपल बातें करें कि अच्छा आप आए हैं, मैं ये हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे हूँ, और आप बताइए आपको आपको ऐसी क्या बात है जो यहाँ पे लाया आपने, आपको या आपको किसने लाया, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। फिर सिंपल बातें पूछ सकते हैं उनको, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप, कुछ ऐसी सिंपल चीजें। हम डायरेक्टली जाके ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे तो ये सही नहीं है, उससे हमारा रैपो बिल्ड नहीं होता है। या वही ना प्रॉपर संबंध कि वो अपनी सारी बातें हमसे शेयर कर सके, बेझिझकों के उसको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति सही है जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, और यहाँ से हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर मतलब जो मेरी प्रॉब्लम्स का सही यहाँ पे हाँ जो मुझे चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा, ये चीज है। दूसरी है सेल्फ डिस्क्लोजर स्किल, माना ये रैपो बिल्ड करते हैं तो फिर वो व्यक्ति खुद अपनी सारी बातें बताना शुरू करता है, तब तक कई बार तो 5-6 सेशन हो जाते हैं तब जाके वो कोई बात, तब पता चलता है रीजन तो ये है सब ये नहीं है ना, तो मैं बता दी माना जैसे आप सर्कल करो तो बीच में प्रॉब्लम है उसका रीजन, लेकिन वो क्या करते इधर उधर ही घूमते रहते, थोड़ा सा नजदीक तक आएंगे एकदम नजदीक, लेकिन वो पॉइंट को बताने में टाइम लगता है कि एग्जैक्टली ये रीजन है। वही तो बताना मुश्किल है ना, अपनी सारी बातें बताना मुश्किल है, ऐसी ऐसी रीजंस होते हैं वो कैसे बताएंगे। समझो एक एग्जांपल ही देती हूँ, पति पत्नी का रोज झगड़ा होता है, पति झगड़ा करता है और रोज रात को पीटता है, अभी रोज रात को पीटता है ये बात बताने में उसको कई साल लग जाते हैं, और बातें जरूर बताएगी लेकिन ये चीज बताने में तो कई साल लग भी सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी कैसी पर्सनालिटी उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन वही चीज काफी सालों के बाद बताएगी कि रोज पीटता भी था, है ना। तो ऐसी चीजें होती है जो फिर तभी इतने इंटेंसिफाई में प्रॉब्लम हुई ना उसको, तो ये चीजें हैं जो टाइम लगता है पूरी तरह से डिस्क्लोज होने में और सही या रियल कॉज समझने में भी। कई बार ऐसे बहुत सारी बातें होती है लेकिन हमें बिल्कुल कोई भी नहीं समझ पाते कि प्रॉब्लम रीजन ये होगी, लेकिन रीजन कई बार कुछ और ही होती है। ठीक है, एम्पथी स्किल थर्ड है ये स्किल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल भी एम्पथी स्किल, जस्ट एम्पथी का मीनिंग क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एम्पथी मीन्स सहानुभूति, हाँ इसलिए मैं पूछ रही हूँ एम्पथी मीन्स। हाँ, सिंपथी और एम्पथी में क्या डिफरेंस है? हाँ पर एग्जैक्टली प्रैक्टिकल में आप क्या इसको एक्सप्लेन कर। ठीक है, सही बताया। तो सहानुभूति में ये होता है कि हम लोग मतलब कई बार उसको बेचारा ये तो तकलीफ में है, ये तो ऐसा है, बस इतना ज्यादा से ज्यादा इसको जरूरत है हेल्प की, पता नहीं इसकी हालत बड़ी खराब है, यहाँ तक हम ये सहानुभूति होगा, किसी को तो हेल्प करनी चाहिए, चलो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, ये सहानुभूति। लेकिन एम्पथी में हम उसकी पूरी बात है कि वो क्या फील कर रहा होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा, मैं उसके साथ जो होगा मैं अपने आप पर सोचता हूँ कि ये अगर मेरे साथ हुआ है तो मैं कैसा महसूस कर रहा होता, या कोई और मेरी मेरा ही कोई आसपास का व्यक्ति रिलेशन में वो कैसे फील करता, तब जाके हम उसकी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं और पॉजिटिव रिगार्ड, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव फीलिंग, मतलब उसके लिए एटीट्यूड के साथ जो मैं बताया थे रिस्पेक्ट सेम, वो ऐसा है वीक है ये है ऐसा नहीं, तो तब ये एम्पैथी स्किल तो उसकी बोल में आना चाहिए वो हमारे, ये जो भी चीजें है ना ये हम समझ पा रहे अंडरस्टैंड कर पा रहे, लेकिन हम उसको जब हम काउंसिलिंग करते तो बातचीत में वो दिखना चाहिए एम्पैथी, ये है एम्पैथी स्किल, सिर्फ हम समझ पा रहे ये नहीं, लेकिन हम बोल से भी हम क्लियर करें कि हाँ। तो उसके कुछ सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोई डिप्रेस्ड है राइट, तो उसके साथ हुआ है कि उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, वो डिप्रेस हो गई है राइट, तो उसके साथ एम्पैथी स्किल और सिंपैथी दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, कैसे करती होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ, बहुत तकलीफ में होगी पता नहीं, हाँ चलो मैं उसको थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा, अगर उसको चाहिए होगा कहीं घर तो मैं उतना हेल्प कर दूँ, कोई बात नहीं है ना, उसको बोलते हुए भी यही बोलूंगी कि अरे आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ऐसे। लेकिन एम्पैथी स्टेटमेंट्स कैसे होते, वो व्यक्ति मेरे पास आई, मैं काउंसलर हूँ तो मैं उसके साथ कैसे बात करूंगी कि हाँ बहन जी मैं समझ पा रही हूँ आपकी प्रॉब्लम को, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, मैं आपकी प्रॉब्लम सचमुच में मैं महसूस कर रही हूँ, समझ रही हूँ कि आप कितनी तकलीफ में हो गए, मेरे साथ होता तो मुझे भी तो इस तरह की तकलीफ होती है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि एक अकेली बहन और मतलब पति ने छोड़ दिया है और दो बच्चे साथ में, तो वो पहली बात तो उसकी रिक्वायरमेंट जो कि जरूरी चीजों में आती कि वो कैसे रहना खाना पीना ये जो जरूरी रिक्वायरमेंट वही कैसे पूरी करना, उसके बाद चैलेंज कितने होते हैं, मैं समझ पा रही हूँ आपको क्या क्या चीजों को लेकर के फेस करना पड़ता होगा, तकलीफ होती होगी, तो ये है एम्पैथी स्टेटमेंट, मतलब मैंने पूरी उसकी कंडीशन को समझ के फिर जवाब दिया है ना, तो ये एम्पैथी स्टेटमेंट बोलने होते हैं, इसी से व्यक्ति को समझ में आता है कि ये मुझे समझ पा रहा है, तो ये एम्पैथी स्किल बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ निगेटिव केसेस आती है उसमें आप एम्पैथी स्किल कैसे यूज करेंगे वो एक और एक्टिविटी हो जाती है, एक जस्ट एग्जाम्पल दू तो जैसे कोई क्रिमिनल है, हाँ क्रिमिनल है जैसे कोई, तो वो अगर आपके सामने आया और आप उसको ऐसे बोलोगे कि हाँ सही है आपने जो किया ना है ना, तो वहां पे किस तरह के एम्पैथी स्किल यूज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे वो डिफरेंट। अभी है ना कुछ स्किल्स जो मैं एक दो तीन स्किल तो बताए, एम्पैथी स्किल कैसे स्टेट मतलब कैसे बोलना है एम्पैथी दिखाने के लिए और रियल में हमें एम्पैथी फील हो रही है तो वो क्या मतलब वर्डिंग्स निकलेंगे उसके, तो एम्पैथी स्किल हमने देखा, कम्युनिकेशन स्किल और रैपो बिल्डिंग स्किल, सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब वो अपने आप को पूरी तरह से ओपन करे शेयर करे अपनी सारी चीजें, ये स्किल देखा हमने। और नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन स्किल, तो रिफ्लेक्शन स्किल ये है कि जब वो हमें बात बता रहा है तो बात बताते वक्त हमारा फोकस है उसकी फीलिंग्स की तरफ, नॉट वर्डिंग्स, तो फीलिंग्स की तरफ है, फिर हम क्या करते हैं उसने कुछ हमें बताया, उसने बोला हाँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पता नहीं मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लग रहा है मुझे, ये ऐसे बोल रहा है ऐसे कर रहा है, लेकिन हमारा फोकस है कि क्या फील कर रहा होगा, मतलब वो तो बोल रहा है ना, तो लेकिन वो क्या फील कर रहा है, तो हम बताएंगे उसको, हम ऑप्शंस भी दे सकते हैं, आप कैसा महसूस मतलब आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत ज्यादा विचार चल रहे है, मतलब स्ट्रेस फील कर रहे है, गुस्सा एग्रेशन फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, उदास उदास सा लग रहा है, डाउन लग रहा है कि मतलब उदास मतलब हम तो समझ रहे हैं ना, तो अगर वो नहीं भी समझ रहा तो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब डाउन सा लग रहा है, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, कुछ है नहीं अभी लाइफ में, ऐसे लग रहा है, हम उसको एक्सप्लेन करें वो फीलिंग माना क्या है, और हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि ऐसा फील कर, ऐसा लग रहा है, तो वो बताएगा हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। तो ये है रिफ्लेक्शन। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या फील कर रहा है, वो हम अंडरस्टैंड करें, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है उस चीज को, तो हम उसको गाइड करें कि ये चीज है ना, जो आप बोल रहे हैं उसको ये कहते हैं, ये वाली फीलिंग इसको कहेंगे। तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये चीज हो रही इसलिए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसको समरी जैसे, और फिर हमने उसको गाइड किया, ऑप्शंस दिए, और हम फीलिंग्स पे लेकर आए उसको। हो सकता है वो खुद ही कहे मुझे डिप्रेस महसूस होता है, तो हमने उसको क्या किया, फिर से बोला, मतलब उसके सामने हम बैठे हैं, वो बोल रहा है कि हाँ मुझे डिप्रेस फील हो रहा है बहुत, पता नहीं चार दिन, पता नहीं दो महीने से मुझे ऐसा हो रहा है, और भी उसने कुछ कहा। तो हमने बीच में पॉज लेके हमने बोला, अच्छा आपको क्या लग रहा है, आपको उदास सा डिप्रेस सा लग रहा है, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, या तो फिर काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, जो डेली आप एक्टिविटीज करते थे उसमें अभी आपको मन नहीं करता, अपने आप ही उठो ही नहीं, कुछ नहीं करूं, सो ही रहूं। तो हम उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे, और फिर उसने कहा हाँ बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा है, हाँ मुझे ये नहीं लग रहा है पर मुझे ये लग रहा है, मुझे मैं काम पे तो जाता हूँ पर मुझे खाने का मन नहीं करता है। तो वो इंटेंसिटी भी बताता है कि कितना हद तक मुझे ऐसा, तो हम फीलिंग को पैराफ्रेज कर रहे हैं, पैराफ्रेज मतलब उसको हम पैराफ्रेजिंग, अभी नेक्स्ट स्किल वही है, पैराफ्रेज हम लेते हैं। पैराफ्रेज में क्या होता है कि जब वो कुछ बता रहा है तो हम बीच बीच में पॉज लेते हैं और वही चीज सिर्फ रिपीट करते हैं जो उसने बोला। तो एक दो सेंटेंस, अच्छा आपने आप, मैं आपको ना एक बार रिपीट करके बताता हूँ जो मुझे समझ में आया आप ये कहना चाह रहे, तो आपने जस्ट रिपीट किया, तो वो कहेगा हाँ बराबर है, आपने सही समझा मैं जो कह रहा हूँ, या तो वो कहेगा नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मैं तो ये कह रहा था, या तो कहेगा नहीं मुझे ऐसा नहीं कहना था, मुझे ऐसा कहना था। तो वो चीज क्या हो जाएगी, हमें क्लियर हो जाएगी उसको क्या कहना है, और उसको भी समझ में आ जाएगा कि वो ये कह रहा है ना, उसको ये तकलीफ हो रही है, कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, उसको भी हम एनालाइज कराने की कला सिखा रहे हैं, कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करे, और हम भी साथ ही साथ हम भी समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, राइट। और बीच बीच में पॉज लेने से फिर हम पूरी जो चीज है वो उसको कोरिलेट कर सकते, समझ सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम, रीजन क्या रहा, है ना, अभी कोप कैसे कर रहा है, वो गलत तरीके से कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है, बीच वाला कर रहा है। तो इसके लिए हम करते पैराफ्रेजिंग। तो हम लोग कैसे किसी को बुला के ना वो चीज करवाते, तो उससे वो व्यक्ति समझ जाता है, लेकिन अभी टाइम तो नहीं हमारे पास, लेकिन कुछ हद तक तो आप समझ गए होंगे पैराफ्रेजिंग। हम नॉर्मली ऐसा करते हैं जैसे ये कोऑर्डिनेट करते हैं, हम क्या बोलते हैं, रेडियो या टीवी चैनल पे भी आता है ना, तो एंकरिंग जो होती है उसमें जैसे पूरी समरी एक्चुअली वो करते हैं, या कई बार पैराफ्रेजिंग भी करते है ना, तो उस टाइप से कि उससे जो अच्छा मतलब आप ये कहना, बीच में ही नहीं वो पॉज करके ऐसे बोलते हैं, रोक के वो बोलते हैं उसको, एंकर जो होता है, तो इस टाइप से पैराफ्रेजिंग ये है, ये शब्दों पे है, मतलब कंटेंट है, ये कंटेंट पे, हाँ लिंकिंग, उसको भी हम लिंकिंग करवा रहे और हम भी तभी समझ पाएंगे ना, और हमें भी याद रहेगा। एकदम से सारा सुन लो ना तो आपको लास्ट में आपको कुछ हो सकता है, कुछ चीज आप मिस कर दो, या तो आप गलत समझ लो, है ना, आप जो वो कहना चाह रहे हैं आप इतना सही नहीं समझा, इसलिए पैराफ्रेजिंग जरूरी होता है दोनों तीनों चीजों के लिए। और रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमारा मेन फोकस है फीलिंग्स के ऊपर, फिर नेक्स्ट एक्चुअली रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन माना हम फीलिंग्स को पैराफ्रेज कर रहे हैं, है ना, फीलिंग्स क्या उसको हो रही है, वो क्या फील कर रहा है, कैसे महसूस कर रहा है, तब कैसे कर रहा था, तो हम वो चीज को बीच में पॉज लेके वो भी हम उसको रिपीट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, पैराफ्रेजिंग क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है। इसमें हम भावना को जो उसको फील हो रही वो हम बताते हैं, यहाँ पे जो कंटेंट है जस्ट वो जो बता रहा है उसको हम क्लियर करते हैं। अच्छा, और थर्ड है समरी, समरी मतलब पूरी, लेकिन उसमें भी हम क्या करते हैं, फुल एकदम कंप्लीट बताने के बाद नहीं, उसमें भी हम बीच बीच में करते हैं, बीच बीच में करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है बताने की सुनने की, तो हम बीच बीच में पॉज लेके पूरा वो समरी के टाइप में, वो एंकर करते वैसे पूरा समरी के रूप में, शॉर्ट में, ब्रीफ में उसको हम फिर रिपीट करते हैं, और वो कहता है कि हाँ ये मैंने नहीं बताया था, या ये सही है, इस तरह से। पैराफ्रेजिंग में हम एक सेंटेंस होता है, दो सेंटेंस होती है, लेकिन समरी जो उसने पूरा बताया उसको हम रिपीट करते हैं शॉर्ट में। तो ये उसके बाद आता है, पैराफ्रेजिंग के बाद हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पे पॉज लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में हम काफी बार उसको टोक, मतलब टोक नहीं हो गया ना, बीच बीच में अगर हम रोकते रहेंगे तो ऐसा नहीं करना है। हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उसने वैसे ही पॉज लिया है और ये कहीं ना कहीं एक चीज कवर हो रही है, तब हम पॉज लेके फिर अपनी बात उसको रोक दे और फिर हम अपना शुरू करें, अपना हम कवर करें, फिर वो ऐसा करना होता है, मतलब हमें देखना होता है। कई बार होता है कि वो बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, तब हमें खुद ही बीच में रोकना होता है। एक थोड़ा पॉइंट कवर हो गया ना, हमें रोकना होता है कि अच्छा ये ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको इसके कारण ये तकलीफ हो रही है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसी चीजें दोनों इकट्ठे भी नहीं करनी होती है। पैराफ्रेजिंग अलग और अलग टाइम पे रिफ्लेक्शन, दोनों को मिक्स करके नहीं बोलेंगे तो अच्छा, क्योंकि उतना वो समझ ही नहीं पा रहा है ना। हम थोड़ा सा बताएंगे अलग अलग तो वो एनालाइज कर पाएगा चीज को। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब जो सारे प्रिंसिपल्स है वो सारे एक्टिव लिसनिंग के ही है। उसको हम पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल यूज कर रहे हैं, है ना, एम्पथी स्किल है, ये सारे क्या एक्टिव लिसनिंग है। उससे वो ओपन हो रहा है, हमसे बात कर रहा है और हम प्रॉपर लिसन कर रहे हैं, हर चीज उसकी सुन रहे हैं, उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं, हम अटेंड कर रहे हैं। अटेंडिंग बिहेवियर एक स्किल है जिसमें कि हम एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं कि उसका एनवायरमेंट ऐसा है कि वो रिलैक्स महसूस करे, हमारी सेटिंग ऐसी हो कि वो रिलैक्स महसूस करे, बराबर का महसूस करे, हमसे नीचे या इस तरह की ह्यूमिलेटेड नहीं महसूस करे। तो ये चीजें हम ध्यान रखते हैं जिसमें कि अटेंडिंग बिहेवियर, मतलब उसने हमें वो अटेंड कैसे कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ भी कोई मेहमान आता है, वो आया, हमने जो दरवाजा तो खोल दिया लेकिन हम इधर उधर देख रहे हैं, फिर हम अपने रूम में चले, तो मीनिंग क्या हुआ। तो ये है अटेंडिंग बिहेवियर कि हम उसके हर चीज, हर बात का इम्पोर्टेंस दे रहे, समझ रहे उसकी बात को, वो फील कर रहा है कि हम कितना उसका ध्यान रख रहे हैं, है ना। तो उसमें जो जो आती है बातें, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, दोनों बातें आती है अटेंडिंग बिहेवियर में, उसका हम ध्यान रखें, ये है स्किल। कई बार जैसे ये भी है सिंपल कि लग रहा है कि वो काफी बोला था, हमने बोला कि आपको पानी चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है बहुत आप थके हुए हो, तो अटेंडिंग बिहेवियर है ना, मैंने उसका ध्यान रखा, तो ये हो गया। बीच बीच में साइलेंस भी रखना होता है, ये भी एक स्किल है। अगर वो बोल रहा है बीच में, उसको लग रहा है मतलब काफी घबराया ये है, वो खुद ही शांत हो गया, हम शांत हो जाए कोई बात नहीं, उसको टाइम दे, उसको बीच में पॉज दे, टाइम दे, वो कंफर्टेबल हो, ओपन हो। ऐसा नहीं वो पहले ही इसमें ओपन हो जाएगा और आपसे बात, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल फेज, नॉर्मल थिंग। कोई भी व्यक्ति जो हमें इतना नहीं पहचानता, वो सारी बातें हमें कैसे सुनाएगा एकदम से। तो हम उसको टाइम दे, हर चीज के लिए हम टाइम दे, फेस दे, और बोलते वक्त भी हम उसको टाइम दे, भले वो शांत हो गया, हो सकता है वो मतलब याद कर रहा है, या तो वो जो इवेंट उसके सामने आ रही तो वो उसको विजुअलाइज भी तो हो रही है ना, तो विजुअलाइज करने में कई बार वो खुद ही उसको एक्सपीरियंस कर रहा है ना, तो एकदम से वो उस इसमें चला जाता है, तो एकदम शांत हो जाता है, या कई बार लगता है मैं उसको याद ही नहीं करूं, बस मेरा तो नहीं कर रहा है मन, तो इस तरह की चीजें होती। कई बार हमें ऐसे भी बोलना, ठीक है आपका मन नहीं कर रहा है इस चीज को आगे लेके जाने का, हम ये बात आगे कभी बात करेंगे, या तो कोई बात नहीं, हम नहीं करते बात, तो ऐसे भी बोलना होता है ना। तो ये चीजें है जहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है साइलेंस की, या रोक देने की, कोई बात नहीं हम दूसरी बात करते, जो दूसरी प्रॉब्लम है उसके लिए बात करते, तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर हम उसको धीरे धीरे मतलब पेरीफेरी से फिर सेंट्रल में लाना, ये होता है। हाँ, पेरीफेरी की चीजों को लेकर के फिर हम सेंट्रल इश्यू में आते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है तब तक, ये चीज है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, तो ये भी एक स्किल है, ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन। कहाँ पे क्लोज क्वेश्चंस करने होते, कहाँ पे ओपन क्वेश्चंस करने होते। तो क्लोज क्वेश्चंस माना जिसका आंसर हाँ या ना में आए, बस उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। और ओपन क्वेश्चंस में वो उसका आंसर काफी लंबा चौड़ा दे सकता है, है ना, डिस्क्रिप्टिव होता है इसका आंसर, उसको फ्रीडम है वो सुनाए, जो भी बताना है वो बताए। तो हमें जब उसकी डिटेल हिस्ट्री लेनी है, उसकी बातें सुननी है, तो हम उसको ओपन टाइप के क्वेश्चन करें। ओपन टाइप के क्वेश्चन मीन्स आप बता सकते हैं एग्जाम्पल? आप बताएंगे आपके साथ क्या हुआ था, तो बताएगा, उसमें हाँ ना का जवाब नहीं है। हाँ उस दिन आप बता रहे थे ऐसा कुछ हुआ, तो आप बताना चाहेंगे क्या हुआ था उस दिन, ये ऐसा हुआ था, जैसे थोड़ा बहुत उसने कभी बताया तो हम बोल रहे कि हाँ ऐसा हुआ था, बता रहे थे कुछ, तो आगे आप बताएंगे क्या हुआ था, ये ओपन क्वेश्चन हुआ है ना। तो ऐसे काफी क्वेश्चन है, ये सारे ओपन है, जो हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, या तो उसका रैपो बिल्डिंग होता है, फिर कम्युनिकेशन अच्छा सा बनता है, तब उसके लिए हम ओपन क्वेश्चंस पूछते हैं। और क्लोज क्वेश्चंस कहाँ पूछते हैं? क्लोज क्वेश्चन वहां पूछना चाहिए, एक तो जहां का जहां जवाब ही यस नो का होना होता है, वहां पे भी हम क्लोज क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ हाँ या ना बोलेगा, तो लेकिन क्लोज क्वेश्चन पूछने में काफी ये चाहिए, स्किल चाहिए। अगर हम ओपन क्वेश्चन क्लोज क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमने ऑलरेडी ऑप्शन दे दिया, तो वो वही सुना देगा, उसका अपना कुछ नहीं हुआ उसमें, है ना। तो मतलब कई बार मतलब हम ये कर रहे हैं, उसके माइंड में नहीं, लेकिन हमने उसको बता दिया, वो वही सुना, मतलब वो बता रहा है उसको। हाँ हाँ और हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट मतलब वो डायरेक्ट नहीं, एक होता है डायरेक्ट मतलब फैसिलिटेशन, वो अलग होता है, ये डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्ट ही उसको वो चीज कहा ना, डायरेक्ट जवाब, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, थर्ड कुछ है ही नहीं। तो क्लोज क्वेश्चंस जो होते हैं वो कई बार हमें तब पूछने होते हैं जब हमें समरी मतलब कट अभी कट शॉर्ट करना है, हाँ, या जस्ट कंफर्मेशन करनी है, या लास्ट में एंड करना है, तब भी हम क्लोज करें। कई बार व्यक्ति मतलब कहाँ कहाँ चला जा रहा है, तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कि फिर सेंट्रल पे आ जाए, वो उसका जवाब ज्यादा वो बोल नहीं सकता है ना, फिर तो उस टाइम पे हम यूज करें, मतलब क्लोज क्वेश्चन हम कम पूछेंगे, हमारे क्वेश्चन ज्यादा ओपन रहेंगे, ताकि उसको फ्रीडम मिले, इजी लगे, कंफर्टेबल लगे, वो अपनी बात बता सके पूरी तरह से। लेकिन कहाँ कहाँ पे क्लोज क्वेश्चन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये हुए ओपन क्वेश्चन क्लोज क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है वो ये स्किल्स है, ये भी जब हम बातचीत करते उसमें भी यूज होते हैं, और जब हम थेरेपी देते उसमें भी यूज होते हैं। मतलब थेरेपी की रीति से भी कुछ टेक्निक्स यूज होती, और जो मैं अभी स्किल बता रही थी उसमें भी यूज होती है, जैसे कि कॉन्फ्रंटिंग। कॉन्फ्रंटिंग में उस टाइप के क्वेश्चंस हम पूछते हैं जिसमें हम थोड़ा प्रोबिंग वे में होते हैं। अच्छा आपने बता रहे थे आप ऐसा ऐसा हुआ था, तो क्या कारण है कि जो आपको ऐसा महसूस हो रहा था, क्या ऐसी बात है जो, तो हम वहां पे जैसे कोई चीज हम हाँ डिगिंग आउट हम ऐसा कर रहे हैं, है ना, वो भले बताना भी नहीं चाह रहा है लेकिन हम जा रहे हैं, लेकिन हम उसके परमिशन से जा रहे हैं, उसको कंफर्टेबल कितना लग रहा है, हम धीरे धीरे जा रहे हैं, इसलिए इसकी भी एक स्किल डेवलप करनी पड़ती है। तभी मैंने कहा ना डायरेक्टली कभी कई बार ऐसा पूछ लेते हैं जबकि रैपो बना भी नहीं है, हाँ, तो ये धीरे 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 पूछना पड़ता है। और कुछ एरिया काफी कंफर्टेबल होते हैं, उसमें हम फट से पूछ, हाँ आपके कितने बच्चे, हम पूछ सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, भले काफी प्रोबिंग है, फिर भी ऐसे कोई तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसमें हम पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कॉन्फ्रंटिंग का मीनिंग ये होता है कि हम काफी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि पर्सनल भी हो सकते हैं, और थोड़े वाई वाले क्वेश्चन कि आपने ऐसा क्यों किया। वैसे काउंसलिंग में एक प्रिंसिपल होता है कि वाई वाले क्वेश्चंस मोस्टली पूछने नहीं चाहिए, अगर उसको पता है इसका रीजन तो आएगा, वो क्यों आया हमारे पास, उसको पता ही नहीं ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका रीजन उसको समझ नहीं आ रहा, तभी तो आया, तो हम वाई वाई के क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको वो कैसे बताएगा। तो कम और वैसे भी कॉन्फ्रंटिंग ज्यादा हो जाता है, तो हम वो व्यक्ति की पर्सनालिटी, वो व्यक्ति का अभी कितनी सीवियर प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों को देखते हुए कौन सा इशू उसके लिए बहुत सेंसिटिव है, कौन सा कम है, अभी कितना हमारा रैपो बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये जा सकते हैं। तो ये कॉन्फ्रंटिंग टेक्निक यूज करनी पड़ती है क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं उसमें। ये जैसे स्किल हो गया, ये थेरेपी में नहीं आता है। कैथेरेटिक भी स्किल भी है और थेरेपी भी आता है। कैथेरेटिक मतलब व्यक्ति को कई बार ना अपनी मन की जो चीजें है उसको पूरी तरह से मतलब हाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाता। या तो कोई एक तो ये चीज है, एक चीज है कि बहुत ज्यादा अंदर में है, बहुत ज्यादा वो, तो उसको ना पूरा निकलना बहुत जरूरी है ना। वो बिल्कुल बोला नहीं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उसको बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो उसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। या तो उसका रोना बहुत जरूरी है उस टाइम पे, नहीं तो वो प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाएगी अगर वो नहीं रोएगा तो ना। कुछ ऐसे क्राइसिस होते हैं जिसमें उसका नहीं रुलाते हैं उसको जानबूझ के, तो उससे क्या होता है हीलिंग होती है, इनर हीलिंग होती है। तो ये काउंसलर क्यों रोएगा, उसको हम कंफर्टेबल कर देते हैं, भले आपको रोना आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसको हम कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो हम ऑब्जर्व करते हुए देख रहे हैं कि इसका बिल्कुल रोने जैसा वो हो गया, या उसको मतलब बहुत अंदर में चीजें हैं और अभी उसको निकलने की जरूरत है। उसकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी कि वो निकलना बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पे हम उसको कहते हैं कि आप सारी बातें जो भी आपके मन में आती सब कुछ बता दो, जिसके लिए जो आ रहा है सब कुछ। हम उसका कोई मीनिंग नहीं निकाल रहे उस टाइम पे, लेकिन उसको जस्ट बोलने देते हैं। या तो उसको बोलते हैं आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, बल्कि आप रो लीजिए अभी ऐसे। तो ये चीज है कैथेटिक में, उसको जो भी फील हो रहा है उसको टोटली एक्सप्रेस करने देना, बल्कि हम उसको डायरेक्ट करें कि हाँ वो आप करो ये चीज। नहीं वो हंसेगा, हम रो रहे तो वो हंसेगा, ये बच्चों जैसा हो जाएगा ना। हम नहीं बच्चे रो, हम रोते तो वो हंसने लगता है ना। तो हमारे रोने के तो बात ही नहीं है, बल्कि काउंसलिंग में ज्यादातर हमारा चेहरा जो है ना एकदम हर्षित मुख, भले उसकी रोने जैसी कंडीशन है तो भी हमारा चेहरा जो है ना हर्षित ही रहना चाहिए, खुश हर्षित मतलब स्माइलिंग रहना चाहिए बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है पता है, बाद में ये इवेंट है ना, बाद में जैसे फ्लैशबैक होता है ना, फ्लैशबैक वो चीजें बिल्कुल आंखों के सामने घूमती रहती, निकलती ही नहीं है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में चली गई है, वो निकलती नहीं, और फिर पता चलता है ये मतलब ये तो एक बीमारी का रूप ले लिया, या बहुत ज्यादा बढ़ गई ये तकलीफ, तो इसका मतलब बीमारी या तकलीफ ये बढ़ गया, इसका जो साइन है निशानी वो है उसका डे टू डे लाइफ हैम्पर हो रहा है, डे टू डे लाइफ में वो चीजें आ रही है, मतलब बीच में आ रही है वो चीजें, है ना, वो बीच में आ रही है, मतलब उसका लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है उसके कारण, उसको बोलते प्रॉब्लम बढ़ गई है, या तो वो प्रॉब्लम इस तरह की है कि इसको अभी ठीक करना जरूरी है, और सिंपल इससे नहीं होगा, उसको कुछ ब्रेक देना चाहिए, टाइम देना चाहिए और ठीक करना चाहिए उस प्रॉब्लम को, ये होता है। तो तब हम कहते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक डेली रूटीन में कुछ भी बात नहीं आ रही है बिल्कुल नॉर्मल सा, तब तक हम कहते हैं कि ये चीज कोई नहीं, नींद नहीं आ रही है तो डे टू डे लाइफ में दिक्कत आ गई ना। कैटालिटिक भी कॉन्फ्रंटिंग जैसा ही है पर उससे थोड़ा कम है, ये फिर भी कम है, इसमें हम सॉफ्टली कुछ चीजें पूछते हैं करते हैं, तो ये एक सिंपल चीजें कहेंगे से ओपन क्वेश्चंस जो है उसमें हम कैटालिटिक को ले सकते हैं। तो ये स्किल है, ये थेरेपी नहीं है। कैथेटिक क्या है, थेरेपी में भी आ जाता है, हीलिंग होती है उसकी काफी, सबकॉन्शियस से निकल जाता है, तो हीलिंग में मतलब ट्रीटमेंट में जैसे हेल्प हुई ना उसकी, और स्किल भी है, स्किल है ना, जब उसने इस तरह की तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो वहीं पे मतलब वहीं पे रह जाएगी हमारी काउंसलिंग वहां तक। वही ओपन सिंपल क्वेश्चन जो हम पूछते हैं, पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डिटेल थोड़ा सा पूछ रहे हैं, हाँ क्या हुआ था उस वक्त में आप बोल रहे थे, तो हम जो पूछ रहे हैं ना ओपन क्वेश्चन नहीं है, तो वो उसकी बात वो आगे बता रहे हैं, हाँ ये हुआ था, ऐसा हुआ था, हाँ मुझे ना ऐसे ऐसी बात होती है। अच्छा आप जैसे आपके हस्बैंड है वो रोज आते हैं, फिर आपका कैसा रूटीन रहता है, क्या करते हैं आप, तो आप वो सारी बातें बताएगा ना, डिटेल बताएगा, तो ये चीजें हो गई मतलब कैटालिटिक जैसी ये हो गई, मतलब हम जिस डायरेक्ट कर रहे हैं ना उसकी जो भी चीजें आगे लेके जा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रोबिंग नहीं है, कॉन्फ्रंटिंग में प्रोबिंग है काफी, तो अभी नेक्स्ट है, ये तीनों जो नेक्स्ट है वो एज अ स्किल नहीं है मोस्टली, वो है थेरेपी के तरफ जाती है, तो वो है, लेकिन वो हमारी कंटिन्यूस बोल में आती रहती है वो चीजें भी। तो सपोर्टिव इंटरवेंशन माना इमोशनल हम सपोर्ट दे रहे हैं उसको। एम्पथी स्किल, ये क्या है? सपोर्टिव है कि हाँ मैं समझ पा रही हूँ उसको, जो आपको जो तकलीफ हो रही है अभी, आप क्या फेस कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा रियली, मतलब आपने जितनी हिम्मत करी है तो क्या कहें, हाँ मतलब हाँ नहीं, आपको अप्रिशिएट करने जैसी है। तो ये इस तरह की चीजें हम सपोर्ट करते हैं उस चीज को, उस व्यक्ति को। एम्पथी स्टेटमेंट्स, एम्पथी जो भी हम बातों में उसको बताते हैं, वो सारे सपोर्टिव इंटरवेंशन में आती है। तो सपोर्टिव इंटरवेंशन हमारा सभी स्टेप में चलता ही है, प्रोसेस जो है ना उसमें, सारी स्टेप्स में सपोर्टिव इंटरवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और फर्स्ट सेशन में तो सपोर्टिव ही होता है मोस्टली। सपोर्टिव हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, राइट, भले वो कई बार गलत भी है तो भी हम सपोर्ट तो कर ही रहे हैं उसको, इमोशनल सपोर्ट तो दे ही रहे, हमारे पास आया है ना वो। सपोर्टिंग हमारा इंटरवेंशन या स्किल यहाँ पे हमें यूज करना होता है स्टार्टिंग में, और हर एक स्टेप में भी जरूरी होता है, लेकिन बाद में तो फिर भी हम कॉन्फ्रेंटिंग यूज कर सकते हैं। कई बार हम उसको कुछ ऑप्शंस देके उसके बिहेवियर में चेंज लाना होता है, वो चीजें हम बताते हैं, लेकिन सपोर्टिव में हम ये चीजें नहीं बताते। हाँ मतलब हम सपोर्ट करते हैं, वो जो भी कह रहा है उसको हम सपोर्ट, उसको हम मान्यता दे रहे हैं, हाँ सही है, ये है वो है, इस तरह की चीज, हाँ सचमुच में ये बात सही है, आपके हस्बैंड ने आपको मारा, सही गलत है वो चीज, वो कह रही है, हम कह रहे हैं हाँ, उसको रिपीट कर रहे हैं, हाँ सचमुच में गलत है ये चीज, कितनी आपको तकलीफ होती होगी, तो हम सपोर्ट ही कर रहे हैं उसको, है ना। तो कई बार हम उसको जस्ट यहाँ पे ये तो ये चीज भी सपोर्टिव में आती है, पर इससे ज्यादा काउंसलिंग में हम कुछ नहीं करते। कई बार नहीं ऐसा होता है, जैसे हम अपने फ्रेंड या भाई बहन, तो हम कैसे करेंगे कि गले भी मिल सकते मिलते हैं या तो, हाँ, लेकिन काउंसलिंग में प्रोफेशनल वे में हम ये चीजें नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते, सिर्फ हम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही करेंगे, या तो कभी हाथ हाथ पकड़ सकते हैं, हाथ मतलब पकड़ के उनको, जैसे हम ये कहते हैं ना, अश्योरेंस देते हैं ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मतलब हम जो जो बातें हमारी बातें काफी सारी हम पॉइंट्स उनको बता सकते हैं, तो इतनी चीजें हम करते नहीं, तो वो डिपेंड हो जाता है हमारे ऊपर, और वैसे भी कई बार इस चीज को निगेटिव लेते हैं लोग, इसलिए हम ये इतनी चीजें हम सिर्फ कर सकते हैं, और फर्स्ट सेशन में तो वैसे हमारा रेपो इतना बनानी है, हम ये चीजें नहीं कर सकते। फिर प्रिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन में जैसे हम कुछ चीजें उनको दे रहे, प्रिस्क्राइब है ना, प्रिस्क्राइब करते हैं, हम कुछ दे रहे, जैसे हमने बोला कि आपको कुछ एक शेड्यूल बना के दिया, आपको उसके अकॉर्डिंगली करना है, मतलब हम कुछ करने के लिए दे रहे हैं उनको, और इन्फॉर्मेटिव वो है, उसमें प्रैक्टिकल कुछ करना नहीं है उसको, लेकिन हम नॉलेज दे रहे, कुछ चीजों की नॉलेज देनी पड़ती है जब हम काउंसलिंग करते हैं, तो ये थेरेपी में आता है, करियर काउंसलिंग है, हम उनको नॉलेज दे रहे काफी सारी चीजें, तो इन्फॉर्मेटिव हो गया। डिमेंशिया है, हम उसको बीमारी की भी नॉलेज दे रहे, इसमें क्या होता है क्या, इन्फॉर्मेटिव हो गया। कोई भी बीमारी में हम उसकी नॉलेज दे रहे, इसमें ऐसा होता है ये होता है, तो इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो ये भी देना पड़ता है। कॉन्फ्रंटिंग तो प्रोबिंग बोला ना, प्रोबिंग कॉन्फ्रंटिंग अभी बताया मैंने, प्रोबिंग करना मना काफी डेप्थ में जब हमें जाना होता है ना, तब हम डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं उनसे, नहीं, वो है कैथेरेटिक, कैथेरसिस नहीं नाम हम बोलते ना, तो कॉन्फ्रंटिंग तो प्रोबिंग वाले क्वेश्चन ना, जो कि हम कम यूज करते हैं काउंसलिंग में, और शुरू शुरू में तो नहीं करते, कुछ समय के बाद हम करते, और एकदम से नहीं करते, कम भी करते, बहुत ज्यादा नहीं यूज करते। तो प्रिस्क्रिप्टिव है जहां पे हम उनको कुछ दे रहे हैं, हाँ आप है ना सुबह में, जस्ट लाइक एडवाइस है वो, लेकिन एडवाइस के फॉर्म में भी नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन जैसे कोई मेडिसिन दी है, वो का एडवाइस नहीं है, आपकी मर्जी, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो आप नहीं भी लोगे, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, इसका मतलब वो लेगा ही ऐसा तो नहीं है, तो उन्होंने अपना काम ऐसे प्रिस्क्राइब कि हाँ आपको सुबह उठना चाहिए, आप सुबह उठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, फिर आप नाश्ता ये करिए, तो हम कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको प्रैक्टिकल में करने के लिए, हाँ रात को सोना सोने के लिए आप ये चीजें आप यूज करिए, तो ये चीजें हैं जिसको हम प्रिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, इट्स लाइक एडवाइस गाइडेंस, पर उस फॉर्म में नहीं कि हाँ आपको ये करना है, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं. और इन्फॉर्मेटिव, हम कुछ कुछ चीजों की उनको नॉलेज भी देते रहते बीच बीच में. हाँ आपको ऐसा होता है ना, एक्चुअली ऐसा होता ही है कि ये चीज होती तो उसमें ऐसा होता है, तो ये नॉलेज दी ना, उसको पता ही नहीं थी, इसलिए भी कई बार एंजाइटी होती है. कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके रीजन ही नहीं पता होता, नॉलेज ही नहीं होता है, इसलिए एंजाइटी होती है. नहीं, छोटे बच्चे, उनको तो कई बार कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए भी उनको फियर होता है. ऐसी चीजें होती है ना, तो नॉलेज देते कि नहीं बेटा इसमें ऐसा होता है, ये होता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती, उसमें ये होता है. तो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेटिव उनको कुछ नॉलेज दे रहे हैं ना, मतलब या तो जैसे नींद नींद नहीं आती है किसी को, तो हम उनको नॉलेज देते कि नींद नहीं आती है. उसमें हम जैसे अपने इसमें भी लेक्चर में देते हैं स्लीप साइकिल, तो नॉलेज दिया हमने कि ऐसा ऐसा स्लीप साइकिल होता है, ये होता है. हाँ, साइंटिफिक जो जो बातें होती वो हम बताते हैं, मतलब इन्फॉर्मेटिव. इसलिए 10 बजे सोना चाहिए, तो हम ये 10 बजे सोना चाहिए ये बोलने से पहले हम कुछ नॉलेज देते हैं उनको. ऐसा नहीं 10 बजे सोना चाहिए, क्या मतलब है सोने का, क्यों सोना चाहिए. तो जो नॉलेज दी हमने उसको बोलेंगे इन्फॉर्मेटिव. तो ये टेक्निक से कुछ थेरेपी के तरह से भी यूज करते, जो कंटिन्यूस हमारे काउंसलिंग की चीजों में आता, मतलब काउंसलिंग सेशंस में आती रहती है. लेकिन कब कहाँ कौन सा यूज करना है वो हमें देखना पड़ता है. हो सकता है कोई प्रॉब्लम ऐसी कि उसको फर्स्ट टाइम ही हमें इन्फॉर्मेशन ही देनी पड़े, इन्फॉर्मेटिव बातें करनी पड़े, तो डिपेंड करता है कब कौन सा, कब कौन सा. और फिर पर्सनालिटी प्रॉब्लम, सीवियरिटी, और ये है जनरल चीजें, लिसनिंग, फैसिलिटेशन, वर्बल रिस्पॉन्स. वर्बल रिस्पॉन्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे वो कुछ कह रहा है हम करते नहीं, तो तभी तो मतलब हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी. तो हम पूरी तरह से रिस्पॉन्ड दे रहे हैं उसको ना, अच्छा ठीक है, फिर क्या है, फिर क्या हुआ. हाँ, तो ये जो चीजें है सब वर्बल रिस्पॉन्ड. क्वेश्चनार से हम असेसमेंट करते हैं कई बार. हाँ, आप में से कोई जानते होंगे पर्सनालिटी के क्वेश्चनार है, कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम कितनी है उसके लिए भी क्वेश्चनार होते हैं, खुशी कितनी है. तो कुछ ऐसे क्वेश्चनार्स होते हैं जिससे हम उसकी पर्सनालिटी बिहेवियर भी कुछ निकाल सकते हैं. तो ये भी हम यूज करते हैं एज ए स्किल. ये अप्रोच है, इस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, आपके बुक में भी है ये कुछ अप्रोच या थेरीज कहते हैं हम इसको. ये थेरीज के आधार पे ये प्रिंसिपल्स, ये टेक्निक्स निकली हुई है. तो मेन जो बेस है ये थेरीज है इसके पीछे. और आगे भी जो हम काउंसलिंग करते हैं, तो मैंने जो बताया था दो प्रकार की प्रॉब्लम, न्यूरोटिक प्रॉब्लम और साइकोटिक प्रॉब्लम. तो हमारा साइकोटिक प्रॉब्लम्स में एज सच थेरापेटिक रोल नहीं है इतना ज्यादा, और कई बार दवाई के बाद हमारा रोल आता है. दवाई शुरू करे, थोड़ा वो ठीक हो जाए, उसकी इंसाइट थोड़ी सी तो डेवलप हो जाए, फिर उसके बाद हम फिर भी काउंसलिंग, मतलब ये थेरेपी थेरीज का काम आएगा. और न्यूरोटिक प्रॉब्लम में हम काउंसलिंग शुरू से कर सकते हैं, और फिर उनको बीच में दवाई की जरूरत हो दवाई के लिए भी भेज सकते हैं, या कोई एक्सपर्ट की जरूरत हो वहां भेज सकते हैं. लेकिन हम उनको स्टार्टिंग में उनकी ये सारी चीजें मिनिमम स्टार्ट तो कर ही सकते, कुछ चीजें उनको बता तो सकते ही है सही वे से. आप में से मतलब आप बता रहे थे मुझे बहन जी कि जैसे हमारे पास कोई भी भेज देते, हाँ इनको ना डिप्रेशन है, इनको ना बहुत टेंशन है, इनको ना मतलब बिल्कुल पता नहीं कैसे बिहेव करते, अजीब सा ही है इनका सर, मेडिटेशन करोगे तो ठीक हो जाएगा, इनके पास. लेकिन ये हम सब जब समझते हैं तो हमें ये नॉलेज मिल जाती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि आप भी कह रहे थे होपलेस केस, तो होपलेस केस में सीवियर प्रॉब्लम है, मतलब उसको अपनी प्रॉब्लम या कुछ भी बातों को समझ ही नहीं पा रहा, इतना डिस्टर्ब है माइंड. तो क्या ऐसे में वो मेडिटेशन कर सकता है, मेडिटेशन ऐसे कर सकता है कोई, और उसको फायदा होगा, है ना. कई बार तो उससे पागल भी हो जाते हैं लोग, है ना, सही तरीके से नहीं करते हैं या समझा हुआ नहीं होता है तो पागल हो जाते हैं. तो क्यों होते हैं, क्योंकि मेडिटेशन प्रक्रिया ऐसी नहीं है, व्यक्ति थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर सही तरीके से समझे प्रोसेस को, और फिर एक आधा घंटा करे उसका वो कुछ अनुभव करे, फिर और करे, फिर वो बढ़ा सकता है उसके टाइम को भी, ऐसा होता है। इसलिए हम हर एक चीज को मेडिटेशन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते या बोल सकते कि आप ये करो तो ठीक हो जाओगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स है न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स जिसमें कि मेडिटेशन का बहुत बहुत अच्छा रोल है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में एकदम मेडिटेशन कई बार नहीं करता है व्यक्ति, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा है, डिप्रेशन है उसमें भी सीवियर प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी माइल्ड मॉडरेट और सीवियर, या तो क्रॉनिक और अभी अभी हुआ है, तो उसमें भी डिफरेंस होता है। तो कौन सी, ये हमें इससे समझ में इतना तो आ ही जाएगा कि हमें किसको रेफर करना चाहिए एक्चुअली, या तो हम भी प्राइमरी काउंसलिंग हम भी करें कि ये प्रॉब्लम आपको हो ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं कि कई बार मतलब व्यक्ति हमें लग रहा है लेकिन उसको प्रॉब्लम हो ही, ऐसा भी नहीं, तो हम थोड़ा टाइम दे समझने में भी, एक बार दो बार मिले तीन बार मिले और फिर हम सोचे कि हाँ इनको ही प्रॉब्लम लग रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अभी जो हमने स्किल्स सीखा है उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ एक दो सेशंस तो हम ले सकते, बात कर सकते, फिर हमें लगता है फिर हम उनको रेफर भी कर सकते, लेकिन उसको प्राइमरी केयर तो मिल जाएगी और हम डिटेक्ट तो कर पाते कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम लग रही, नहीं तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है और ही उसको इग्नोर करते और ही मतलब और वो प्रॉब्लम्स की बढ़ती जाती है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो हम उसको, बल्कि हमारे पास ये एक स्किल है जिससे हम उनको मदद कर सकते हैं और उनको भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी होता है कभी, हमें भी हो सकता है कभी। तो एग्जांपल्स लें, इसमें अप्रोच ये है, जस्ट मैं सुनाती हूँ, साइकोडायनामिक साइको एनालिसिस, ये हम जो पिछली सारी हिस्ट्री लेते हैं ना बहुत पहले की, बचपन की भी बहुत सारी पहले की, ये इसमें आती है, क्योंकि इसका कई बार कनेक्शन होता है तो कई बार जरूरत होती है ये जानने की, तब हम ये यूज करते हैं। बिहेवियरल, जैसे आपने बताया कि कोपिंग में नहीं जाता डर लगता है, तो बिहेवियरल हो गया ना, मुझे भीड़ से डर लगता है मैं वहां नहीं जाता हूं, तो मेरा बिहेवियरल है ना, बिहेवियरल वो चेंज करना है मुझे, तो डायरेक्ट वो चेंज करना पड़ेगा। जो चीजें हमने सीखी है कुछ ना कुछ रीजन से कि मैं नहीं जा रहा हूं, उसको हम फिर से अनलर्न भी कर सकते हैं, जो चीज हमने सीखी है उसको दूसरी चीज भी हम सीख सकते हैं ना, धीरे 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 एक्सपोजर करते करते वो नई चीज सीख सकता है। और उसको हम दो चीजें करते हैं, अप्रेज प्रेज करते हैं, मतलब कुछ रिवार्ड देते हैं, तो उस तरह से उसका जो वो अच्छा वाला बिहेवियर है वो और बढ़ता जाता है, और अगर कोई सही नहीं है बिहेवियर तो उसको हम पनिशमेंट नहीं देते, पनिशमेंट कम, ये बहुत कम यूज करते क्योंकि इससे एक्चुअली ग्रोथ नहीं होती, लेकिन हम उसको रिवार्ड नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी वो समझ, ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर क्या है ना, तो इस तरह के ये है बिहेवियरल। तीसरा है ह्यूमैनिस्टिक, अपने जो सारे प्रिंसिपल्स हमने देखे वो सारे ह्यूमैनिस्टिक पे है, तो अगर काउंसलिंग के पिता कहेंगे तो यही है कार्ल रोगर्स, है ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सारे जो स्किल्स प्रिंसिपल्स ये इसी थ्योरी पे आधारित है, मतलब पर्सन को पूरी तरह से रिगार्ड देना, और उसमें हम पोटेंशियल को देखते हैं कि वो ठीक अपने आप को कर सकता है, खुद इंडिपेंडेंट बन सकता है, हम उनको ये चीजें सिखाते हैं तो वो अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, ये है ह्यूमैनिस्टिक। फिर ट्रांजैक्शनल, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, कॉग्निटिव है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स में। कॉग्निटिव मतलब एक्चुअली और कुछ नहीं है, बाबा ने हमें जो बेसिक चीजें बताई है ना, तो वो और ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मींस अपने संकल्पों पे ध्यान देना, मतलब विचार बेस है और फिर उसके बाद फीलिंग्स, उसके बाद फिर एक्शन, फिर पर्सनैलिटी, है ना, तो ये चीजें कहां से जनरेट होती है, विचारों से, तो विचारों पर हमें ध्यान देना है, उसकी डायरी मेंटेन करते हैं, और जो थॉट्स हमारे सही नहीं है तो उसको हम चैलेंज करते हैं कि ये थॉट्स क्यों सही नहीं है, तो और भी कोई ऑप्शन है जो सही है, या ये हम सोच रहे ऐसा है, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि भाई भीड़ में जाएंगे तो पता नहीं कोई कुछ कर देगा, तो ये मेरा जो थॉट सही नहीं है ना एक्चुअली, वो भी समझ रहा होता है कि सही नहीं है एक्चुअली, मुझे बिना मतलब के डर लग रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, कुछ होता नहीं है अंधेरे से, पता है फिर भी डर लग रहा है, तो ये इरेशनल थॉट्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज करना सिखाते हैं, अल्टरनेटिव थॉट्स सोचने के लिए हम उसको सिखाते हैं कि इसके बजाय आप क्या सोच सकते हो। सचमुच में ऐसा हुआ, अंधेरे में आप कभी गए हो और आपको कुछ किसी ने किया हो या कुछ होता है? ये चैलेंज करना हुआ ना, अपने ही जो हमने सबकॉन्शियस में चला गया उसको हम चैलेंज करते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है, वो हमारा जो थॉट है वो चेंज होने लगता है, मतलब हम पॉजिटिव की तरफ उसको लेके जाते हैं वो थॉट को, और थॉट में चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर सब चेंज होने लगता है। तो ये है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और फिर उसमें नेक्स्ट आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो कॉग्निटिव उसमें चेंज करते हैं तो बिहेवियर में चेंज आता है, तो बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम थॉट पे लेके जाते हैं और थॉट को चेंज करने की प्रोसेस सिखाते हैं। फिर डेवलपमेंटल, ये मोस्टली बच्चों में है, और जब डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है तो वो स्टेजेस में कौन कौन सी चैलेंजेस आती है हमारे इसमें, जो नॉर्मली आती है, जैसे हर स्टेज में आपने देखा है कि 11 महीने का बच्चा होता है तब उसको मतलब वो जस्ट थोड़ा सा चलना सीखता है, ये नॉर्मल चीजें है ना, ऐसी ही सारी चीजें हैं, मतलब मन की बुद्धि की ये सारी चीजें भी स्टेप, वो उसके स्टेप में ही कुछ कुछ चीजें सीखते, तो उस स्टेज में वो ये चीज सीखता है, उस स्टेज में ये चीज सीखता है, ऐसा होता है, उस स्टेज में ये चीज नॉर्मल होती है, उस स्टेज में ये नॉर्मल होता है। जैसे बच्चों में डर तो रहता है छोटे, वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं कहेंगे उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीजें डेवलपमेंटल, तो ये भी समझना जरूरी है। उस टाइम पे अगर वो स्टेज उसने क्रॉस नहीं की है तो उसका असर एडल्ट में वो चीजें पाई जाती है। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के लिए ये पर्सनैलिटी की थ्योरी है, सोशल साइकोलॉजी, पर्सनल कंस्ट्रक्ट जस्टल्ड, इक्लेक्टिक वो थेरेपी है या थ्योरी है जिसमें हम सब चीजों को इकट्ठा यूज करते हैं, मतलब कोई भी थेरेपी सिंगल यूज करने का कोई मतलब नहीं है, मोस्टली 3, 4 या 5, 6 तो हम यूज करते ही है, कोई भी थेरेपी मतलब उसको ठीक करना होता है प्रॉब्लम को, तो उसमें हम 2-3 चीजों को इकट्ठा ही यूज कर रहे होते हैं और उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं इक्लेक्टिक। हो गया, जनरल केसेस इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, वो आपको मैं स्लाइड्स दे रही हूँ आप भी देख लेंगे, एडोलिसेंट में ये प्रॉब्लम आती है, मतलब किशोरा अवस्था में, ओल्ड एज में, बच्चों में छोटे बच्चों में, मतलब फिर फैमिली में ये प्रॉब्लम्स के लिए मतलब व्यक्ति हमारे पास, या तो नॉर्मली ऐसे होता है उसमें काउंसलिंग की जरूरत है। विमेन है उनमें ये प्रॉब्लम आती है, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स है, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई साइकोलॉजिकल के पहले वो है, फिर भी थोड़ी छोटी फॉर्म में, मतलब माइनर इश्यूज, और साइकोलॉजिकल मतलब उसमें तो बहुत ही जरूरी है काउंसलिंग करना या कई बार दवाई लेना भी। ये एंजाइटी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है तो क्या होता है, वही 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 थॉट चल रहा है, एक ही थॉट बार 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 चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है कि उसको मिनिमाइज करने के लिए वो कुछ ऐसा कोपिंग बिहेवियर यूज कर लेता है, जैसे कि हाथ धोना, या तो अलग अलग प्रकार के है, तो उसका लॉन्ग फॉर्म है ऑब्सेशन, जैसे ऑब्सेशन में ना विचार बार 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 इरेशनल, वो भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेशन को कम करने के लिए कोई ना कोई कंपल्शन, मतलब उसको एक कोई चीज लगती है जिससे वो थोड़े टाइम के लिए उसको ठीक लगता है, इसलिए वो डिसऑर्डर में चला जाता है, क्योंकि बार 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 फिर वो बिहेवियर करेगा, जैसे कि कई बार होता है कि वो दरवाजे को लॉक लगा है या नहीं वो चेक करना बार बार, है ना, तो ऑब्सेशन इतना, उसको पता है कि ऐसा नहीं है फिर भी मतलब इतना ज्यादा है कि उसको माइंड कंट्रोल ही नहीं होता है उस चीज से, तो बार बार पे जाके तो देखेगा थोड़ा टाइम के लिए वो शांत हो जाता है, तो ये एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी अभी है इसमें, ये बिल्कुल साइकोटिक प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम बढ़ जाती, क्योंकि इसमें व्यक्ति बताता नहीं है, अपने आप ही ऐसे ही चलता जाता और वो प्रॉब्लम बिल्कुल जैसे साइकोटिक प्रॉब्लम्स, मतलब सिजोफ्रेनिया जिसको हम नॉर्मल शब्द में पागलपन बोल देते हैं, लेकिन सिजोफ्रेनिया कहते हैं, तो सिजोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उस व्यक्ति की लाइफ में, मतलब पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इसमें डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है इनिशियल स्टेज में। अगर जल्दी से हम समझ जाते तो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, अगर बाद में पता चलती है मतलब बहुत समय के बाद तो काफी मुश्किल हो जाता है।